अपना माइंड ले जाएं 2016, 2016 जब साल की शुरुआत कैसे हुई थी, साल की शुरुआत हुई थी पठानकोट के एयरबेस पर एक टेरर अटैक से। देखिए सर्जरी जब करते हैं, अगर आपका हार्ट की सर्जरी है या लिवर की सर्जरी है, तो एक अच्छा सर्जन वो ऐसे कट लगाता है कि ऊपर थोड़ा सा ब्लड आएगा, उसके बाद किसी और ऑर्गन को हर्ट नहीं करता है, तो किसी और अंग पे कोई असर नहीं पड़ता, वो बीच में जाकर के सीधा हार्ट तक पहुंचता है या किडनी तक या लिवर तक, जिस जो इंटेंडेड टारगेट है, तो वो सर्जरी है। हमने भी स्ट्राइक किया तो हमारा मुद्दा था सीधा टेररिस्ट का पर स्ट्राइक करने का, क्योंकि टेररिस्ट नहीं आकर के पठानकोट में किया था, टेररिस्ट नहीं आकर के हमारे पंपोर में अटैक किया था, टेररिस्ट ने उड़ी में अटैक किया था, हम टेररिस्ट को मारना चाहते थे, टेररिस्ट बेस पे मारना चाहते थे, इसलिए हम सीधा अंदर गए जस्ट लाइक ए सर्जरी। वो सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए उसका नाम कहा जाता है कि हम सिर्फ अपने मुद्दे पे गए, वहाँ पे नुकसान पहुँचाया, वहाँ पे कैजुअलिटीज की और वापस आ गए। और बदबूले ये तब हुआ जबकि उसके कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके प्रधानमंत्री से मिलने अचानक क्रिसमस वाले दिन पहुंच गए, उनसे एक मीटिंग करी रिलेशन नॉर्मलाइज करने के। उसमें
क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्त कास्ट में, मेरा नाम है विनम्र कसाना। आज के हमारे गेस्ट ने डायरेक्टली उरी वाले जो मशहूर सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, ही वॉज द मैन हु प्लान एंड एग्जीक्यूटेड देम। इट इज़ माई ग्रेट ऑनर एंड प्रिवलेज टू वेलकम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ टू दोस्त कास्ट। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हैज़ बीन PVSM, UISM, SMVSM रिटायर्ड एंड रिटायर्ड एज द चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। ही वॉज ऑल्सो अ काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट फ्रॉम 8 जैकली सियाचिन, और ही हैज़ ऑपरेटेड एक्सटेंसिवली इन JNK एंड द नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग हिज 4 डेकेड्स ऑफ सर्विस। इस पॉडकास्ट के अंदर हम लोगों ने एग्जैक्टली सर्जिकल स्ट्राइक्स की निटिग्रिटी समझी है, उस दिन जिस दिन इंडियन आर्मी के सोल्जर्स सैडली मार्टियर हुए और उसके बाद इन्होंने कैसे फाइट बैक करा। इतनी डिटेल्स इससे पहले आपको इन स्ट्राइक्स के बारे में कभी नहीं मिली होंगी, एंड यू विल नोटिस द ग्रेविटास इन द मैन्स वॉइस एंड हिज वर्ड्स व्हेन इट कम्स टू लीडिंग मैन थ्रू सम ऑफ द टफेस्ट सिचुएशंस पॉसिबल इन बैटल। 4 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम द आर्मी, अ कॉन्वर्सेशन लाइक नो अदर दैट विल ब्लो योर माइंड एंड मेक यू रिस्पेक्ट द आर्म फोर्सेस इवन मोर, द अमेजिंग the mega respectable retired Lieutenant General Satish Dhawan. Dost Cast begins in 3, 2, 1. General Dhawan, पहले हम elephant in the room को address कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम और बातचीत पे आएंगे। First of all, thank you so much कि आप specially हमसे मिलने यहाँ पे आए, हमसे बात करने के लिए, कि the man of your stature has chosen to be so kind to be on my podcast. Thank you so much.
Thank you, Vinamr. फॉर इन्वाइटिंग मी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप जैसे यंग लोगों से मुखातिब होता हूँ और बातचीत करता हूँ। थैंक यू।
ऑसम। मैं थोड़ा उस सीधा आई एम गोना एड्रेस द थिंग दैट प्रॉब्ली इज लाइक बहुत सारे आपने बहुत मेडल जीते, आपने बहुत यू हैड एन एक्सटेंसिव लाइन ऑफ ड्यूटी इन द आर्म फोर्सेज, बट देर इज समथिंग जो आपने किताब में खुद ही लिखा है कि वन ऑफ द लास्ट ऑपरेशन यू वर एवर अ पार्ट ऑफ वो थे जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे। तो उससे पहले लेट मी आस्क यू दिस, 29 सितंबर को हुए, ठीक है
जी,
उससे पहले के ऐसे क्या इंसिडेंट्स थे व्हेन यू वर पोस्टेड देयर दैट लेड टू दिस हैपनिंग इन द फर्स्ट प्लेस? हो सकता है क्योंकि देखो मीडिया ने कुछ बोला है, पाकिस्तान ने कुछ बोला है, किसी और ने कुछ बोला है, बट यू वर देयर एंड यू वर हेडिंग दिस मिशन एसेंशियली
जी।
तो इफ यू वुड बी सो काइंड टू Maybe help us understand what were the events leading up to this strike.
So, allow me to put it in 2 parts. Pehla to ye ki main takriban 4 dashak se main Jammu Kashmir mein raha hu, operations kiye hain maine LOC pe alag alag hisson mein, Poonch Rajouri mein, Kashmir mein, Kupwara mein, Kargil mein bhi. मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करता है जो यहाँ आके वायलेंस क्रिएट करते हैं, और हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी ख़राब हो जाती है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हम हमेशा डिफेंसिव ही हुए हैं, क्योंकि हम लोग हम तो कोई टेररिस्ट नहीं भेज पाते उस तरफ, तो हमारा उसका रिएक्शन क्या है, वी आर ऑलवेज रिएक्शनरी एंड वी आर ऑलवेज डिफेंसिव। दूसरा भाग ये है, जैसे आपने पूछा कि व्हाट वर द इवेंट्स लीडिंग अप टू इट, उन दिनों में क्या हो रहा था, तो आप अगर अपना माइंड ले जाएं 2016 जब साल की शुरुआत कैसे हुई थी, साल की शुरुआत हुई थी पठानकोट के एयरबेस पर एक टेरर अटैक से। वो जो चार टेररिस्ट पठानकोट के एयरबेस में घुस आए थे और इतनी कैजुअलिटीज हुई, इतना नुकसान हुआ, और बदबूली ये तब हुआ जबकि उसके कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके प्रधानमंत्री से मिलने एक अचानक क्रिसमस वाले दिन पहुंच गए, उनसे एक मीटिंग करी रिलेशन नॉर्मलाइज करने के उसमें, और जनवरी में ये टेरर अटैक हुआ, एक बड़ा हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हुआ था। उसके बाद फरवरी में उसी साल एक और बड़ा हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हुआ था पंपोर में। पंपोर इज़ ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर, वहाँ पे 4 सुसाइड टेररिस्ट केम इन और उन लोगों ने एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, एक बड़ी 6 मंजिली इमारत को में इन्होंने हॉस्टेजेस लिए, 66 हॉस्टेजेस वर टेकन, ऑल कश्मीरी मैन एंड वेमेन। तो ये ऑपरेशन तकरीबन 3 दिन चला, हम उन सारे 66 सिविलियंस को बाहर निकाला सेफली, लेकिन हमने एक भारी कीमत चुकाई, हमने 3 ब्रेवार्ड्स खोए, 2 ऑफिसर और 1 जवान स्पेशल फोर्सेस के, वो भी मैंने इस किताब में लिखा हुआ है। तो ऐसे कुछ, और उसके बाद दोबारा एक बार ऐसा ही हाई प्रोफाइल अटैक हुआ, तो ऐसे ही हाई प्रोफाइल अटैक होते रहे, ये एक माहौल था। फिर 18 सितंबर 2016 को जब हमारे उड़ी बेस पे, जो कि बिल्कुल LOC पर है, जब वहाँ अटैक हुआ और हमने 18 जाने खोई, तो आई थिंक मेरा जो पहले का बैकग्राउंड रहा है, जहाँ पे मैं एज ए मेजर एज ए कर्नल ऑपरेशंस में हिस्सा लेता रहा हूँ, पर्सनली एनकाउंटर्स में जाता रहा हूँ, हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन सी रहती थी कि हम सिर्फ डिफेंसिव होते हैं। उस दिन मुझे मौका ये मिला कि हमारे को उसी दिन पहली बार शायद ऐसे हुआ कि उसी दिन डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पहुँच गए,
मनोहर पारिकर जी, जी पे।
स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी उसी दिन दूसरी दोपहर में, जिस दिन उड़ी पे अटैक हुआ 18 सितंबर को, वो आ गए। जब और मैंने खुद डिफेंस सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि नहीं नहीं आज नहीं आना चाहिए, आज आई डोंट वॉन्ट VIPs ऑन माई हैंड्स, मतलब मेरे को बहुत कुछ करना था, ऑपरेशन चल रहे थे, इनकी डेड बॉडीज आनी थी, इनको हमने अगले दिन क्या सेरेमनीज करनी थी, आई वोंट कॉल इट प्रेशर बट देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, दिल्ली से हमारा आर्मी हेडक्वार्टर, सब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सबको जवाब देना है, पेरेंट्स उनके आखिरी गांव में आखिरी माइल तक कैसे जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा, हेलीकॉप्टर से जाएगा, ट्रैक्टर से यानी ट्रक से जाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया और वो आए। तब हमने ये सोचा कि इसका हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं उनके यहाँ होने का, और उन्होंने भी एक बड़ा बोल्ड सा सवाल पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं। तब हमने उनको ये रिक्वेस्ट की कि हम लोग हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं, अब टाइम आ गया है आई थिंक हमारे को कुछ और करने का, वी शुड ऑल्सो मेक देम हर्ट इक्वली, एंड इसीलिए हम जाएंगे अंदर और टेरर कैंप्स पे, जिनकी लोकेशन हमें मालूम है, हम टेरर कैंप्स को मारेंगे, हिट करेंगे, सिविलियन कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ ही, हम टेरर कैंप्स में जाएंगे, टेररिस्ट को हिट करेंगे, उनकी लोकेशंस हमें मालूम है, ताकि उनको भी पता लगे। उन्होंने टू हिज क्रेडिट उन्होंने वहीं पे इजाज़त दे दी, ये सब डॉक्यूमेंटेड है मेरी किताब में, उन्होंने वहीं पे इजाज़त दे दी कि हाँ करिए। आई थिंक देयर वॉज सच अ मूड इन द नेशन, द होल कंट्री वॉज angry against Pakistan sponsored terrorism, the leadership in Delhi was agitated, mere apne soldiers they wanted revenge, to in sab ko mila ke we turned this pain into an opportunity I think, and we got approvals to do what we did, and it led to surgical strikes exactly 10 days later,
and you can have your tea also by the way,
thank you
so आप ही की किताब के अंदर, मैं इस पे दोबारा से आता हूँ, लेकिन आप ही की किताब के अंदर आपने एक दो इंसिडेंट ऐसे बोल रखे हैं कि आप पहले भी जे एन के में पोस्टेड थे, 80s के टाइम पे आप बताते हो कि LOC का माहौल ऐसा होता था कि मतलब दो तरफ के लोग, कोई सेवई खिला सकता है,
बिल्कुल,
कोई यू नो चाय के लिए चीनी मांग लेना, इस तरह के रिलेशन हुआ करते थे। सो फ्रॉम देयर गोइंग टू डायरेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्या उस टाइम भी हमारी पोजीशंस डिफेंसिव हुआ करती थी, या मतलब इतनी ज़्यादा कॉर्डल रिलेशन कैसे थे उस टाइम पे?
उस वक्त क्या था कि दोनों तरफ की जो कंट्रीज की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैड नॉट एग्रीड ऑन द बॉर्डर, तो बॉर्डर इशू वॉज अनरिजॉल्व्ड। लेकिन बॉर्डर के आसपास हमारी रोज़मर्रा की फायरिंग नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उसकी कोई वजह नहीं थी। आप गार्ड कर रहे हो बॉर्डर को अपनी तरफ से, और वो अपनी तरफ से गार्ड कर रहे हैं, इसलिए आपस में बातचीत भी हुआ करती थी। वो जो इंसिडेंट मैंने ईद पे, उन्होंने कहा सेवैयाँ खिलाएंगे तो आप खाएंगे, तो हमने कहा खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। और बल्कि मुझे याद है वो हमसे कभी कभी चीनी मांगा करते थे, क्योंकि उनको उस वक्त राशन में गुड़ मिलता था चाय के लिए। तो ताल्लुकात काफ़ी अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने ये देखा, पहले पंजाब में प्रॉब्लम उन्होंने स्टार्ट करवाई, ISI ने, पाकिस्तान ने शह दी, मॉरल आइडियोलॉजिकल फाइनेंशियल सपोर्ट देके, जब पंजाब में प्रॉब्लम सुलझी 80s में, तो फिर उसके बाद उन्होंने JNK में शुरू किया। क्योंकि हुआ क्या था एसेंशली 1971 में, जब हमने उनके देश के दो हिस्से कर दिए एक किस्म से, और उसके पहले दो लड़ाइयाँ और वो हमारे साथ लड़ चुके थे, और पाकिस्तान हैड रियलाइज्ड कि वो कन्वेंशनल टर्म्स में इंडिया से जीत नहीं पाएंगे। तो अब उन्होंने ये एक नई चीज़, जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पे उन्होंने नया पैंतरा फेंका, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। इट्स अ वेरी ओपन सीक्रेट, इट्स अ नोन पॉलिसी दैट दे वर फॉलोइंग। और उसके करते जब वो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते गए, पहले पंजाब में ट्राई किया, फिर JNK में, अब जब वो उसी LOC पे टेररिस्ट भेजते थे, तो हम टेररिस्ट को अगर हम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल में होते थे, फिर उनकी आर्मी टेररिस्ट को हेल्प करती थी, तो देन वी केम इनटू अ कन्फ्रंटेशन। सो आई वाज आंसरिंग, आपने जैसे पूछा कि हालात ख़राब कैसे हुए दोनों आर्मीज़ के बीच में, वो इस वजह से। तो इसलिए पहले का वाक्य मैंने यही दिखाने के लिए किया कि 80s में ऐसी कोई टेंशन नहीं थी, शुरू में अर्ली 80s में, 82-83 का मैंने वाक्य दिया है, अब बाद में हालात ऐसे हो गए।
इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत, अगर आप विकिपीडिया पर जाओ तो उसमें तीन तरह के वो आते हैं, उसमें लिखा आता है इंडियन वर्जन, पाकिस्तानी वर्जन, मीडिया वर्जन, ऐसे लिखा आता है
जी।
तो पाकिस्तान के लोगों ने तो बहुत हद तक ये भी डिनाई कर दिया कि स्ट्राइक ही नहीं हुआ है,
बिल्कुल
ठीक है। अब ये उन्होंने क्यों करा सकता है, अपनी जान बचाने के लिए, टू सेव फेस, और वर दे ट्राइंग टू लाइक अंडरमाइन द इफेक्ट दैट द स्ट्राइक हैड ऑन द कंट्री?
मोर देन दैट, आई थिंक अगर वो मान लेते कि हाँ कुछ हुआ है, उन्होंने कहा इन्होंने LOC के पार से ही फायरिंग की और कुछ नहीं किया, यही कहा उन्होंने, लेकिन हमारे पास तो ड्रोन्स की फुटेज है,
और आपने कुछ मीडिया में भी रिलीज कर दी थी इवेंचुअली, हाँ
उस टाइम मीडिया में रिलीज हुई थी,
हाँ,
कि ड्रोन्स की फुटेज है कि क्या अटैक हो रहा है। अगर पाकिस्तान एडमिट कर लेता तो फिर दे वर ड्यूटी बाउंड टू डू समथिंग। पाकिस्तान में आर्मी का एक बहुत हाई स्टेटस है, तो फिर उनका देश उनकी आर्मी से डिमांड करता है कि फिर आप क्या कर रहे हो अगर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की या उन्होंने आगे टेरर कैंप पे अटैक किया, तो दे वुड हैव बीन ड्यूटी बाउंड टू डू समथिंग, एंड आई डोंट थिंक दे वर इन अ पोजिशन टू कैरी आउट दैट काइंड ऑफ अटैक, बिकॉज दैट वुड मीन दे आर नॉट गोइंग टू स्ट्राइक एट टेरर कैंप्स इन आर साइड, सो दे वुड हैव हैड टू स्ट्राइक एट आर आर्मी, विच वुड हैव spiraled into a full-blown conflict, and that is what they were not prepared to do.
So as a result, they denied it to save face.
That is the only thing. Yes, that is the only reason I can see. क्यों उन्होंने उसको deny किया, बिल्कुल underplay कर दिया.
And so you know, 7 years after the surgical strike. First of all, let me take it back. आपने किताब में बड़ी अच्छी तरह बता रखा है surgical strike क्या होता है. News में जब ये पहली बार आया तो a lot of us were caught unaware about what a surgical strike is. We usually would assume that आप कॉमन वर्ब यूज़ करते हो अटैक, और यू से कि यू नो हमने एक ऑपरेशन करा और असॉल्ट करा, आई मीन यू आर बेटर, यू नो यू हैव अ बेटर वोकैबुलरी अबाउट दैट, बट व्हेन हाउ डिड दिस टर्म सॉर्ट ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक कम अबाउट एंड क्या उसकी डेफिनेशन क्या थी एग्जैक्टली?
देखिए सर्जरी जब करते हैं, अगर आपका हार्ट की सर्जरी है या लिवर की सर्जरी है, तो एक अच्छा सर्जन वो ऐसे कट लगाता है कि ऊपर थोड़ा सा ब्लड आएगा, उसके बाद किसी और ऑर्गन को हर्ट नहीं करता है, तो किसी और अंग पे कोई असर नहीं पड़ता, वो बीच में जाकर के सीधा हार्ट तक पहुंचता है या किडनी तक या लिवर तक, जिस जो इंटेंडेड टारगेट है, तो वो सर्जरी है। हमने भी स्ट्राइक किया तो हमारा मुद्दा था सीधा टेररिस्ट का पर स्ट्राइक करने का, क्योंकि टेररिस्ट नहीं आकर के पठानकोट में किया था, टेररिस्ट नहीं आकर के हमारे पंपोर में अटैक किया था, टेररिस्ट ने उड़ी में अटैक किया था, हम टेररिस्ट को मारना चाहते थे, टेररिस्ट बेस पे मारना चाहते थे, इसलिए हम सीधा अंदर गए जस्ट लाइक ए सर्जरी। वो सर्जिकल स्ट्राइक इसीलिए उसका नाम कहा जाता है कि हम सिर्फ अपने मुद्दे पे गए, वहाँ पे नुकसान पहुँचाया, वहाँ पे कैजुअलिटीज की और वापस आ गए। हमने आर्मी के साथ कोई हमारी झड़प ही नहीं हुई, पाकिस्तान आर्मी के साथ। ऑफ कोर्स वी वर फॉर्चुनेट, आई थिंक फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कि हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई इस पूरे ऑपरेशन में।
एंड आपने किताब के अंदर ये भी लिखा कि 2016 के बाद हम लोगों ने प्रोएक्टिवली जाके करना शुरू करा, जो आप बोल रहे थे पहले कि फिलॉसफी डिफेंसिव थी, राइट? सो एंड दैट हैज स्टिल बीन द सेम एज फार एज आवर ईथोस इज कंसर्न्ड।
आप देखिए, एक बार म्यांमार में ऐसे ही स्ट्राइक हो चुकी है, म्यांमार में कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट कैंप्स जो म्यांमार साइड में है, अब म्यांमार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन म्यांमार के पार बॉर्डर के पार, क्योंकि वहाँ पर इंसर्जेंट कैंप्स हैं, उन कैंप्स पे स्ट्राइक किया है। उसी प्रकार हमने डोकलम में किया, डोकलम में क्या, ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, हम प्रोएक्टिव होने की बात कर रहे हैं। जब चीन की फौजें भूटान की तरफ बढ़ने लगी, वो इंडिया भूटान चाइना का ट्राई जंक्शन है, तो हमारी आर्मी उठ खड़ी हुई थी कि हम आपको इसके आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि आपका नहीं है। एंड इट्स वेरी नाइस टू सी, मैं डोकलम मैंने खुद विजिट किया, वो मेरी रेजिमेंट की एक बटालियन थी जब ये ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद जब पुलवामा में हाई प्रोफाइल टेरर अटैक हुआ, जिसमें हमने 40 जाने खोई, तो फिर हमने दोबारा जैसे 2016 वाली स्ट्राइक थी एक वैसी, बट अलग तरीके से प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स की, और वो डीप इनसाइड पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान के अंदर जाके, पीओके में नहीं, वो जब्बा टॉप पे की। जब्बा टॉप बालाकोट के पास है, जब्बा टॉप पे, जब्बा टॉप में भी वैसे ही टेररिस्ट कैंप्स हैं जैसे हमने उड़ी के एवज में किया था।
अभी एग्जिस्टिंग पूरी एलओसी पे कोई ऐसे टेरर कैंप्स हैं जो हमें पता है उनकी एग्जिस्टेंस है, बट वी डोंट अटैक देम नेसेसरली?
बिल्कुल, जो टेरर कैंप्स हैं उनके, जो मेन 10-12 टेरर कैंप्स हैं बड़े वाले, उनकी लोकेशंस हमें मालूम है। हम इसी वजह से तो हम जा अटैक कर पाए थे, क्योंकि उनकी लोकेशंस हमें मालूम है, उनमें जो एक्टिविटी, अब वो एक्टिविटीज कम ज़्यादा होती रहती हैं, उसके बारे में इंटेलिजेंस हासिल होती रहती है। तो अगर खुदा ना खास्ता आइंदा वो कोई ऐसी मिस्टिमिनर करेंगे, तो फिर हमारी ऑप्शंस फिर वैसी हैं, हमारे पास वैसी मिलिट्री ऑप्शंस रहेंगी।
नाउ लेट्स गो बैक टू द डे जब ये सब हो रहा है और आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है? उस टाइम आपने बताया था कि आप रूम में बैठे हुए थे और आपके साथ डिफेंस मिनिस्टर भी मिले, फिर उसके बाद आपने बाहर जाके जो आपके बेस्ट ट्रूप्स आप भेजने वाले थे इस ऑपरेशन में, ऑब्वियसली आप ऑपरेशन की डिटेल्स नहीं शेयर कर सकते, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मोराल, क्योंकि अब आप इनको भेज रहे हो टू एसेंशली डू अ वेरी कोर्ट ऑप एंड हिट द टारगेट एंड कम बैक, क्या आप उनका इस टाइम पर मोराल बूस्ट कर रहे हो? आर यू गोइंग ओवर द स्ट्रेटजी लाइक, बिकॉज इवन यू डिस्पाइट हैविंग सो मच एक्सपीरियंस, इवन योर हार्ट मस्ट बी रेसिंग, राइट? इट्स लाइक इट्स क्रिटिकल।
देखिए ऐसे है कि आर्मी में हर आदमी का अपना रोल है। मैं कोर कमांडर था, बतौर कोर कमांडर मेरा रोल था इजाज़त लेना, प्लानिंग करना, प्लान बनाना, उसकी एग्जीक्यूशन, सिलेक्शन ऑफ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब एंड उनकी ट्रेनिंग, दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड, इट वाज डिसेंट्रलाइज्ड टू द राइट पर्सन। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ मैन Nobody can select the men better than the commanding officer. जो उनका जो CO है उस बटालियन का, वो सेलेक्ट करता है कितने जो चुनिंदा आदमी हैं जो इस ऑपरेशन में जाएंगे. और ये स्पेशल फोर्सेस के लोग के जवान थे, NCOs और ऑफिसर्स थे. ये स्पेशल फोर्सेस ऐसे ही कंटिंजेंसीज की प्रैक्टिस करते रहते हैं हमेशा. तो उनके उनके मन में एक तैयारी की भावना थी. अब सिर्फ उनको फोकस करना था कि आपके टारगेट्स क्या हैं. और ये हमने मल्टीपल लोकेशन में किया, एक जगह पे नहीं किया. तो एक सीनियर कमांडर क्या कर सकता है कि वो उनको बैकिंग दे सकता है, करेक्ट डिसीजन दे सकता है. जो उनको चीज़ें चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मैं बता नहीं पाऊँगा, वन शुड नॉट डिस्क्लोज दीज थिंग्स. तो वो सब चीज़ें उनको मुहैया कराई और उनको एक खुली छूट दी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं टू गिव देम अ फ्री हैंड, सो दैट दे कैन कैरी आउट द ऑपरेशंस एब्सोल्युटली द वे दे वांट टू.
एंड दिस वॉज सो कोवर्ट कि आपने इसको कोड नेम तक नहीं दिया.
जी.
कोई रेडियो ट्रांसमिशन नहीं होती इसके बारे में. यू डिलिबरेटली केप्ट इट अंडर द रडार.
हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाने दी. मैंने अपने ऑप्स रूम में डिस्कशन नहीं की. हमेशा अपने ऑफिस में बुलाया जो कंसर्नड ऑफिसर्स थे, उनको अपने ऑफिस में बैठ के हमने बात की. बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी. हाँ, मैं जाकर के आर्मी कमांडर को ब्रीफ किया, उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट और आर्मी चीफ को ब्रीफ किया. वो एक चलता रहता है, लेकिन नीड टू नो बेसिस पे हमने इसकी इंफॉर्मेशन. नाम क्यों नहीं दिया? नाम हमने इसलिए नहीं दिया कि द मोमेंट यू गिव ए कोड नेम, एक ऑपरेशन का नाम शुरू हो जाता है, फिर उसकी बातचीत शुरू हो जाती है. लोग बोलते हैं ये ऑपरेशन में हम हिस्सा ले रहे हैं. सो वी डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू टॉक अबाउट इट.
And in all your years in JNK, आपने किताब के अंदर बहुत स्टार्टिंग में आपने बताया कि दो, जब आप बता रहे थे कि जो पहले सैडली जो 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 ऑल द सोल्जर्स दैट डाइड, दैट इज व्हाई यू डिड द सर्जिकल स्ट्राइक इन द फर्स्ट प्लेस. यू सेड कि जो सुसाइड बॉम्बर घुसे थे, दे वर द सॉर्ट ऑफ पीपल, उनके लिए नथिंग मैटर, सो नेचुरली डैमेज ज़्यादा होगा. एंड माई द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई हेड इज कि यू नो, फॉर समवन हु हैज नथिंग टू लूज, इट्स वेरी डिफरेंट टू किल, राइट? Yeah, as opposed to someone who has a family to suicide bomber nahi hai. Sure, you must have seen dozens and you must have like a proper idea ki when it comes to danger, the worst kind you can encounter is someone who's like a suicide killer. Right? So, as far as their psychology is concerned, could you talk a little bit more about that?
Dekhe, pehle toh let me talk about the, suicide terrorist. Suicide terrorist... एक किसी उसमें एक पागलपन का भूत सवार है और उसके साथ आम तौर पे देखा गया ये नशा करके आते हैं.
रियली?
यस. जो 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 इतना अपने आप को सुसाइड टेरर अटैक करने वाला है.
हाँ.
अपने आप को ब्लो अप करने वाला है. ही रियली हैज टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट.
व्हाट अबाउट जो मार्टर होने की जो उनको एक,
तो वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ. ज़रूर, एक तो उनको आइडियोलॉजी का भूत सवार है, हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूर मिलेंगी, वो सब जो आप सुनते रहते हैं वो एक वास्तविकता है. लेकिन दूसरी तरफ हर आदमी को, यानी कि वो कांप ना जाए, लास्ट मिनट में डगमगा ना जाए, इसलिए वो ज़्यादातर देखा गया है कि दे आर ऑन ड्रग्स. खैर, वो बात छोड़िए. जो इंडियन आर्मी का सोल्जर है, हमारा सोल्जर जब जाता है, न सिर्फ किसी सर्जिकल स्ट्राइक में, एक डे टू डे पेट्रोलिंग में, जब डे टू डे एम्बुश में जब जाता है एक जवान, हम लोग सर्व करते हैं विद ए कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी. आई हैव रिटन अबाउट दैट इन द बुक. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे हर दिन जब वो पेट्रोलिंग के लिए जाता है, एम्बुश में जाता है, वो मरने के लिए तैयार है. ही इज़ लेइंग his life on the line every day that he goes out on operations, because anything can happen anytime. Aur iska matlab ye bhi hai ki jaise aap civil world mein dekhen, civil world mein aap bahut mehnati workers dekhenge, chahe wo corporate world hi ho, aap bade acche achievers dekhenge. Log bahut mehnat karke acche profits kama sakte hain. लोग मेहनत करके दे टर्न द कंपनीज अराउंड. यू हैव सच ग्रेट लीडर्स ऑफ मैन मोटिवेटर्स एंड मेक गुड टीम्स, बट नो वन इज विलिंग टू डाई फॉर हिज कंपनी. एंड वेरी फ्रेंकली कंपनी भी नहीं चाहती है कि somebody should die for the company. डिफरेंस क्या है? आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको एक काम मिलता है, आपको सडनली एक अच्छा बेहतर काम मिल जाता है, बेहतर पे वैकेंट मिल जाता है, तो आप छोड़ भी देते हैं. बट फॉर अस, फॉर सोल्जर्स, द लॉयल्टीज आर सो स्ट्रांग दैट फॉर 40,000 रुपीज एंड नो बोनस दिस सोल्जर इज विलिंग टू पुट हिज लाइफ ऑन द लाइन एवरी डे. दैट इज द डिफरेंस.
दैट इज इनक्रेडिबल. आई डोंट थिंक इस तरह की डिवोशन आप, I wouldn't even call the armed forces a profession because it really extends beyond profession.
It is a way of life.
Because you can't have this kind of devotion in anything. Aap kuch bhi aur kar lo, where what you pay for is not your time but your life.
Yes.
You know, aapne kitab ke andar ye bhi likha tha that in those early days of, because I've never read an account where the LOC is explained so beautifully, right? हम मन में सोचते हैं एक सिविलियन की तरह, ओ एलओसी, वो पिक्चर देखी थी एलओसी कारगिल, या हम एलओसी का जिक्र सुनते हैं न्यूज़ वगैरह के अंदर, इट्स लाइक लाइन ऑफ कंट्रोल और वहाँ तक खत्म हो जाते हैं. बट देन यू मेंशन दैट एलओसीज आर अनलाइक इंटरनेशनल बॉर्डर्स,
जी,
राइट, व्हिच रिक्वायर कॉन्स्टेंट मैनिंग,
यस,
टू मेंटेन. उस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों के लिए?
देखिए, एक इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है? इंटरनेशनल बॉर्डर इज ए वेल डिफाइंड लाइन, और उसके बल्कि उस वहाँ पे ताकि कोई झड़प ना हो जाए एक नो मैन्स लैंड छोड़ दिया जाता है बीच में. सो यू आर सिटिंग एंड यू डोंट हैव टू बी मैनिंग द होल बॉर्डर, क्योंकि वो एक डिफाइंड बॉर्डर है. एलओसी इज लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब ही है, जैसे वो लफ्ज़ कहता है, कंट्रोल, जिसके कंट्रोल में है वो लैंड उसके उसके कब्जे में रहेगा. ग्रैबर्स कीपर्स, अगर आप कल इस पहाड़ी पर चढ़ के बैठ गए तो वो आपकी हो गई.
एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन real-time coordinates of the maps of both countries?
Yes, it is reflected in the real-time coordinates. It is agreed to. LOC is agreed to by both the countries, but it is not yet agreed to as the border. This is an issue which is yet to be resolved. अभी इसका resolution होना बाकी है. जब resolution हो जाता है तो फिर वो parliament से ratify होता है. International border parliament से ratify होता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि हम आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन में बैठे हुए हैं. यानी कि हमारा, अनलाइक इंटरनेशनल बॉर्डर, हमारा यहाँ पे फासला, दरमियानी फासला बहुत कम होता है. कई जगहों पे तो बिल्कुल 50 मीटर 100 मीटर के फासले पे हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं. जब मैं आपको वो वाक्य बताया था कि ज़ोर से चिल्ला के कोई बोल सकता है या नीचे आकर के एलसी पे मिल सकते हैं, उन्होंने हमें सेवैयाँ दी थी, तो वो इतने पास हैं हम लोग जो चिल्ला के बोल देते हैं. जो दूसरा वाक्य दिया था जब उन्होंने कहा था कि आपके सीईओ साहब नीचे जा रहा है नहीं तो हमें, हम गोली मारेंगे,
जी जी.
सो दैट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपन बिकॉज यू कैन शाउट अक्रॉस, इतने पास हैं एक दूसरे के. तो एलओसी की डायनेमिक्स बिल्कुल अलग होती है. इसमें जोखिम होता है, इसमें फायरिंग होती है, और ये ट्रेचरस सा इलाका होता है. इसकी पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, और वो तब भी करनी पड़ती है जब बर्फगिरी होती है, जब एवलांचेज होते हैं. तो सो दैट इज़ वाई जस्ट लिविंग ऑन दी एलओसी, सिर्फ रहना, दुश्मन की गोली ना भी चल रही हो वो भी खतरे से खाली नहीं है.
आपने ये भी बताया कि एलओसी की पोस्टिंग इनफैक्ट इतनी इंटेंस हो जाती है कि आप थोड़े टाइम में जवानों को भेज देते हो, कहीं और चले जाओ.
हम छुट्टी भेजते हैं.
हाँ,
कोशिश करते हैं कि एलओसी अगर कोई बेस ड्यूटी है तो थोड़ी देर बेस ड्यूटी में जाए, वरना 3-4 महीने के बाद जरूर उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी जाए घर.
इज इट बिकॉज वहाँ पे देयर इज नो सेंस ऑफ रिलीफ एट ऑल?
एक तो सेंस ऑफ रिलीफ वो ही नहीं है, मतलब यू आर 20, मैं तो कहूँगा 25/7
विजिलेंस.
आप विजिलेंट रहोगे, गोलियाँ चलती रहती हैं, आप सो भी रहे हो और गोलियाँ चल रही हैं, बंकर में आप सो रहे हो गोलियाँ चल रही हैं, तो हर आदमी उठता नहीं है क्योंकि आप रोज रात की बात है.
ऐसे ही चला रहे होते हैं गोली की, मतलब टू मेंटेन प्रेशर?
मैं ये नहीं कहूँगा ऐसे चला रहे होते हैं. कोई वजह होती है, किसी को आशंका हो जाती है. मान लीजिए एक जानवर भी गुजरा, किसी को आशंका होती है ये तो आ तो नहीं रहे, तो वो गोली चला देंगे. दूसरी तरफ कभी कभी ऐसे भी चला रहे होते हैं, स्पेकुलेटिव फायरिंग जिसे हम कहते हैं, स्पेकुलेटिव फायरिंग की अगर इधर से कोई आ ना रहा हो तो अगर गोली चलेगी तो थोड़ा एक कॉशन हो जाएगा किसी के दिमाग में. तो गोलियां चल रही हैं और आप सो रहे हो, सो इट इज़ नॉट नॉर्मल लाइफ. इसलिए हम चाहते हैं कि जवानों को कुछ ब्रेक मिले और जवान अपने घर ही हुआ है, इससे अच्छा अगर 10 दिन के लिए भी घर जाएगा, इट विल बी अ गुड ब्रेक फॉर हिम.
हाउ मेनी इयर्स हैव यू सर्वड इन एंड अराउंड एलओसीज? Roughly.
टोटल करना पड़ेगा, ऑफ एंड ऑन मिला, बिकॉज मैं अलग अलग टेन्योर में, हम लोग जाते हैं, हम लोगों का टेन्योर होता है, एक टेन्योर अगर हम 2 या 3 साल के लिए हम बॉर्डर पे आते हैं या ऑपरेशनल एरिया में आते हैं, उसके बाद हम एक टेन्योर जा करके किसी, हम उसको पीस स्टेशन बोलते हैं, फैमिली जहाँ पे फैमिली के साथ रह सकते हैं, दीज आर ऑल नॉन फैमिली स्टेशंस, तो हम ऑल्टरनेट करते रहते हैं. तो आई थिंक आई वुड हैव सर्व फॉर अराउंड 12 to 14 years, अगर आप टोटल करेंगे
12 to 14 years इन एब्सोल्युटली मेगा विजिलेंट एनवायरनमेंट्स वेयर देयर इज कांस्टेंट गनफायर एंड फियर ऑफ योर लाइफ. हाउ, if you want me asking, how does it not break you psychologically?
No, like I said, it's not continuous. पहली बात तो ये है कि ये लगातार नहीं है, अलग अलग टेन्योर में है. दूसरा, मैं वो टेन्योर भी आप गिन रहा हूँ, जैसे कि जिस टेन्योर में मैं बिल्कुल LOC पे खुद नहीं बैठा हूँ, क्योंकि अब मेरा रैंक सीनियर है. अब जब मैं कमांडिंग ऑफिसर हूँ तो मैं बेस पे हूँ.
करेक्ट.
हालांकि मैं पूरी LOC का दायित्व मेरे ऊपर है, मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ, 2-4 दिन इस पोस्ट पे, 2-4 दिन उस पोस्ट पे रहता हूँ, लेकिन मैं बेस पे हूँ. बेस बिल्कुल LOC पे नहीं है. तो LOC पे तो सिर्फ कंपनी होती है, LOC पे कंपनी लगी होती है. तो इसीलिए मतलब उसमें आपका जो टेन्योर है, जो सर्विस है, वो अलग बढ़ती रहती है.
येट स्टिल मतलब इट्स नॉट लाइक आप दिल्ली में पोस्टेड हो ना, पीस पोस्टिंग को छोड़ दो, तो वहाँ पे अच्छा आपके बंदे भी हैं, लेकिन वो भी तो कॉन्स्टेंटली विजिलेंस में है. तो देख, साइकोलॉजिकली आर यू ऑलवेज इन स्ट्रेटजी मोड कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है?
मैं यूँ कहूँगा कि हम लोगों को एक, देर इज़ ए टर्म कॉल्ड बैटल इनोकुलेशन, हमारे को वो बैटल इनोकुलेट हो चुके होते हैं. वी, दैट हैज़ बिकम आवर वे ऑफ लाइफ. तो जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि उनको ब्रेक ज़रूर मिल जाए थोड़ा सा, लेकिन एक फौजी जवान, हमारी इन्फेंट्री का जवान खास तौर पे, ये हमारी लाइफ बन जाती है.
एंड व्हेन यू टेक योर रिटायरमेंट एंड यू ट्रांजिशन टू सिविलियन लाइफ,
जी,
उसके अंदर डू यू सॉर्ट ऑफ मिस सर्विंग और डू यू फील लाइक यू कैन मे बी गेट पार्ट्स ऑफ दैट एक्सपीरियंस इन सिविलियन लाइफ, क्योंकि ये तो बहुत अलग जिंदगी है अब, राइट?
Well, I do miss being in action sometimes. दिल करता है कि वही एक्शन होता. शुरू शुरू में तो एक बड़ा खालीपन सा लगता था कि अब मैं करूँगा क्या. एक सिविल लाइफ में हम, अगर आपने 4 दशक लगा दिए फौज में एक्टिव सोल्जरिंग में, तो उसके बाद ये सिविल लाइफ को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट देन दैट इज़ लाइफ.
सो बट व्हाट डिड यू डू टू गेट, अब मैं तो ये नहीं बोलूँगा, नो वन इज एवर फुली एडजस्टेड, राइट? बिकॉज वॉट यू लिव्ड इज ऑन द एज. तो ये तो क्या है, मतलब इफ यू आर लिविंग अ 10, दिस इज अ 4, 5, 6 इन टर्म्स ऑफ, यू नो, लाइक जो आपके हो सकता है, जो एड्रेनलिन भी इंसान को इन जनरली सिविल लाइफ में मिलता है, तो जब इनिशियली आपको डिफिकल्टी हुई और एक खालीपन लगा, तो हाउ डिड यू कोप विद इट?
फ्रेंकली फर्स्ट वॉज, मेरे रिटायर होने के 1-8 साल बाद कोविड हुआ, और कोविड का फ़ायदा उठा के मैंने ये किताब लिखी.
अच्छा, ठीक.
तो राइटिंग अबाउट योर ओन एक्सपीरियंसेस अबाउट सोल्जर्स, ये एक अच्छा तरीका था टू रीलिव दैट, दोबारा से उसी के बारे में एक्सपीरियंस करना. दूसरा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग, मैं हॉर्स राइडिंग करता हूँ. आई एम फॉन्ड ऑफ मोटरसाइकिल राइडिंग, आई हैव गॉन टू लद्दाख.
सॉ योर व्हाट्सएप डीपी, ग्रेट रॉयल एनफील्ड, यू आर राइडिंग अ ब्लू वन, आई हैवंट सीन वन इन अ व्हाइल.
ओके, थैंक यू. तो मैं लद्दाख के ही 3-4 ट्रिप कर चुका हूँ पिछले रिटायर होने के बाद, मोटरसाइकिल पे, घोड़े पे लद्दाख में जा चुका हूँ. कई,
सॉरी, आप घोड़े पे लद्दाख गए हो?
मतलब लद्दाख में जाके हॉर्स राइडिंग की है? घोड़े पे लद्दाख नहीं गया. लद्दाख में ज़ंस्कार पोनीज होते हैं, मैं पूरा आगे फॉरवर्ड इलाकों में जाके मैंने राइडिंग की है, हॉर्स राइडिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज.
ऑल बाय योरसेल्फ?
नो, नॉट ऑल बाय मायसेल्फ. इट इज़ इन अ ग्रुप. इट इज़ नॉट, इवन मोटरसाइकिल राइड्स यू डोंट डू ऑल बाय योरसेल्फ, क्योंकि कुछ ना कुछ हो जाए, मतलब एक कंपनी चाहिए ग्रुप में, तो विद फ्रेंड्स. तो ऐसी एक्टिविटीज कीप यू क्लोजर टू एडवेंचर, कीप यू क्लोजर टू, इट इज एज क्लोज टू द आर्मी लाइफ दैट यू कैन. नाउ आई कैन फाइंड टाइम फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज.
या वो, मैंने तो भाई सुना है, मेरे को पता नहीं था ज़ंस्कार पोनीज क्या होते हैं. स्पेशल काइंड ऑफ हॉर्स?
ज़ंस्कार एक इलाका है.
ज़ंस्कार तो समझ गया. हाँ. उनके कोई इंडिजिनस
तो
घोड़े होते हैं
उनका? हाँ, तो वो घोड़े जो हैं वो उनकी, दे आर शॉर्टर, उनकी लेग्स आर लिटिल शॉर्टर, सो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होती है. सो वो पहाड़ी रास्तों पे दे आर वेरी श्योर फुटेड.
ओके.
वो अगर जैसे ऊंचा, हमारे ऊंचे वाले घोड़े हैं, वो लड़खड़ा सकते हैं, गिर सकते हैं. पहाड़ी रास्तों पे, वेर एज दीज पोनीज आर शॉर्टर, इनकी गेट भी बहुत छोटी होती है, ऐसे टक टक टक, मतलब उनके जो कदम भी बहुत छोटे होते हैं, तो उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, पर वो बड़े श्योर फुटेड होते हैं पहाड़ी रास्तों पे, जहाँ पे आदमी चल सकता है वहाँ पे वो घोड़ा चल सकता है। जो आर्मी के म्यूल्स भी होते हैं उनके लिए हमें बड़े ट्रैक बनाने पड़ते हैं, जो लोड कैरिंग म्यूल्स होते हैं उनके लिए बड़े ट्रैक बनाने, यानी कि हर उस जगह पे जहाँ एक सोल्जर चला जाए वहाँ पे वो म्यूल जा पाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़ंस्कार पोनी हर जगह चला जाएगा।
तो आप यू डोंट रेस हॉर्सेस, यू मोर स्पेसिफिकली लाइक यूज देम फॉर ट्रैक्स?
Yes, I don't race horses. I'm not into, never into. I like to do jumps and tent pegging, but I don't race ever.
So now let's go back to जो हमने वो बात करी थी कि एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट लिखा है, वही वाला जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे कि जहाँ पे बोला आपके सीओ साहब आउट इन दी ओपन है हम शूट कर देंगे, वो आपको चिल्ला के बोल रहे थे पाकिस्तान की साइड से, फिर आपने बोला कि एलओसी पे बैठ के आपको माइंड गेम्स खेलते रहने होते हैं
जी,
आपको लोग डिकॉय डराते रहेंगे फिर आप उनको वापस डराना है, एंड सो कुड यू मे बी डिस्क्राइब सम ऑफ दिस माइंड गेम्स दैट यू हैड टू प्ले जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो यू मैन द राइट पोस्ट ऑफ द एलओसी?
अब ये वाकया ले लीजिए जो आप बता रहे हैं, अब इसमें क्या हुआ कि हमें फॉरवर्ड स्लोप से जाना, यानी कि जो दुश्मन को नज़र आ रही है ऐसी स्लोप पे जाना है, एलओसी बीच में एक नाला है, नाले के साथ साथ थी वहाँ पे, अब हम वैसी जगहों पे हम लोग नॉर्मल एक पठान ड्रेस पहनते हैं जैसे गांव के लोग पहनते हैं, सलवार कमीज़ पहन के चलते हैं ताकि दूर से देखने से उसको पता ना लगे कि फ़ौजी है या नहीं है। अब उसने हमारे पोस्ट वाले को चिल्ला के बोला, मैंने कहा पोस्ट कई दफ़ा बहुत पास पास होती हैं, तो उसने चिल्ला के बोला कि वो आपके सीओ साहब जा रहा है उनको रोको, नहीं तो हमारे को ऑर्डर आ रहा है कि हम फायर करेंगे। तो इसने कहा नहीं नहीं हमारा सीओ नहीं है, उसको नहीं कहता हमारे को मालूम है सीओ साहब है और हम फायर करेंगे। अब देखो एलओसी जो है बड़ी पोरस होती है, गांव उधर गांव हैं, गांव घर बिल्कुल एलओसी तक हैं, लोग बातचीत करते हैं, आफ्टरऑल सिविलियन भी रहते हैं एलओसी पर। तो अब मेरे मन में ये माइंड गेम्स की बात है, मेरे साथ छः जवान थे, अब मैं इनके सामने अगर बैठ जाऊं कि वो फायर करेंगे तो हमारे को गोली लग जाएगी, तो मेरे जवान क्या बात करेंगे। मैं मेरे दिमाग में ये आया हमारा सीओ साहब तो डर गया। तो माइंड गेम, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक किस्म से साइकोलॉजिकल डोमिनेशन भी होना ज़रूरी है। तो फिर मैंने अपने जेसीओ को नीचे से बोला कि उनको चिल्ला के बोलो, आवाज़ उनको दो और बोलो कि अगर तुमने एक गोली चलाई तो तुम्हारी पहली गोली हमारे सीओ को तो लगेगी नहीं, लेकिन ये तुम्हारी पूरी पोस्ट हम नस्ता नाबूद कर देंगे। और वो वहाँ पे हम लोग हमारी दो पोस्टें उनकी पोस्ट को डोमिनेट कर रही थी, हम रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह और हैवी वेपनरी अगर इस्तेमाल करते उनकी पोस्ट तोड़ देते। और फिर बोलते, और उन्होंने कहा अब जितना आपका नुकसान होगा जो कैजुअलिटी होगी उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। अब ये कह तो हमने दिया, लेकिन उसके बाद हमने थोड़ा रुके ताकि वो भी अपने कंपनी कमांडर को पीछे फ़ोन पे बताएगा, कंपनी कमांडर उनका बहुत पीछे था, उसको बताएगा इजाज़त लेगा कि करें या ना करें। और फिर मैंने अपने जवानों को कहा कि भाई डरें या चलें, तो सब ने जोश में कहा सब चलते हैं। तो अगले जो तकरीबन 20-25 मिनट या आधा घंटा, क्योंकि एक सपाट एरिया था जो ओपन में था, उसके बाद फिर जंगल का इलाका शुरू होता था दूसरी पोस्ट के लिए, वहाँ तक वहाँ पहुँच कर फिर हमें थोड़ा कवर मिल जाता। तो तब तक हमारे दिमाग में आशंका बनी रही कि अभी गोली चलेगी, अभी
आप लोग लाइन ऑफ फायर में थे?
हम उनके लाइन ऑफ फायर में थे, रेंज में थे, तो अगर गोली चली तो मैं भी मानता हूँ कि पहली गोली शायद लग ना जाए, लेकिन किसी ना किसी को तो लग भी सकती है। और मैं उस टाइम सोच रहा था कि कल को अगर इन्होंने भी ये भारी तादाद में फायरिंग कर दी और हमारी 3-4 कैजुअलिटीज़ हो गई तो सब लोग मुझे क्या कहेंगे, बड़ा हीरो बनने चला था। इट्स अ फैक्ट, तुमने अपने नुकसान करा दिया, रुक जाते अंधेरा होने तक। तो इसीलिए मैं इसको माइंड गेम्स कह रहा हूँ। तो हमने एक किस्म से साइकोलॉजिकल डोमिनेशन हासिल की अपने दुश्मन पे।
बट इट इज़ पता नहीं आपको किस प्रकार की देवीय शक्तियों को मन में डाल के ये खेलना पड़ा होगा कि बिकॉज अगर आपके सामने कोई और आपको क्लियरली थ्रेट दे रहा है, आप उसकी थ्रेट को बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके बोल रहे हो अगर ऐसा होगा हम आपको बर्बाद कर देंगे, एंड देन गोइंग एंड डिलीवरिंग इट।
अब देखिए, जैसे मैंने एक अलग वाक्य में लिखा था कि मैं बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता था ऑपरेशंस में, अब ऑर्डर्स हैं, सबको पहननी है, सब पहनते थे, मैं जान के नहीं पहनता था. इट वॉज फुलिश. आई वॉज एक्टिंग ब्रेवर देन आई फेल्ट. क्यों? क्योंकि उससे जवानों के दिमाग, मेरे जवान, उनके दिमाग में एक जोश आया कि हमारा सीओ साहब आगे चल रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी, आगे चल रहे हैं, हमारे को इनको प्रोटेक्ट करना है, हम भी आगे चलेंगे. तो वो एक भावना लाने के लिए. तो यहाँ पे भी यही था कि अगर मैं अपने जवानों के दिमाग में ये एक दिमाग में आ जाए, हमारा सीओ तो डर गया, उन्होंने वैसे धमकी दी हो तो डर गए. तो दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, माइंड गेम्स. तो इन ऐसी छोटी छोटी इनटेंजिबल बातों से, बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनना, इनटेंजिबल बातों से आपके, यू इंस्पायर योर मैन, उनमें एक अलग टाइप का जोश आ जाता है.
जोश एक तरफ, लेकिन कोई आपको ये भी तो बोलेगा यार आप थोड़ा कंजर्वेटिवली एक्ट कर सकते हो
जी.
आपको मतलब यू आर सेटिंग एन एग्जांपल, ग्रेट.
यस,
बट कोई नहीं बोलेगा कि यार ये थोड़ा ज्यादा कॉन्ट्रेरियन है.
जी, मैं मानता हूँ दैट इज वाई लीडरशिप इज एन आर्ट, नॉट अ साइंस. जो आप बोल रहे हो, आप बिल्कुल साइंटिफिकली ठीक तरीके से बोल रहे हो कि ऐसे करना. और अगर सब लोग साइंटिफिक तरीके से चलेंगे तो फिर विक्ट्री हासिल नहीं होगी. ये 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 फुटबॉल फील्ड नहीं है.
बिकॉज दिस इज लाइफ एंड डेथ.
एब्सोल्युटली.
लीडरशिप के अंदर ही, मतलब ऐसा तो नहीं है, बिकॉज आपने बताया स्टार्टिंग में किताब के वेरी प्रीफेस, यू सेड दैट यू नो यू आर trying to be a doctor but then you switched over, right? And you didn't look back at all and you didn't regret it.
No, never.
Even with you, aap, it is not, maybe you were a natural leader, par ye is tarah ka hausla ya sahas hasil karna aur aadmiyon ko aise lead hona, did it come naturally to you or did you gradually acquire ki shayad mera role best ye hai ki main, I am always the most courageous version of myself, taki mere bande khul ke khel paaye? Or were you reading journals about leadership वगैरह ऐसे?
Well, थोड़ी बहुत रीडिंग तो सब करते हैं. हमारे को बतौर ट्रेनिंग भी रीडिंग करनी पड़ती है, लीडरशिप के बारे में सिखलाया भी जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट कम्स बाय योर अपब्रिंगिंग. आप किस माहौल में बड़े हुए. मेरी बटालियन ने एक तो वॉलंटियर बटालियन थी, 1947 में एक वॉलंटियर फोर्स के तौर पे खड़ी हुई थी, 1947 में जब कश्मीर में पाकिस्तान से कबाइले आए थे. 1971 में मेरी बटालियन के दो बैटल ऑनर हैं और काफी अवार्ड्स हैं.
दे आर कॉल्ड द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव.
माय बटालियन इज कॉल्ड ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव. दैट हैपेंड मच लेटर, लेकिन मैं सीक्वेंशियली बता रहा हूँ कि 71 में दो बैटल ऑनर हमारे, एक थिएटर ऑनर. 1987 में हमारी बटालियन ने हाईएस्ट अटैक इन द वर्ल्ड एग्जीक्यूट किया, सियाचिन ग्लेशियर पे 21,153 फीट पे. बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला, लिविंग लीजेंड, आज भी जिंदा है. एक महावीर चक्र, हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स, बहुत सारे सेना मेडल, कमेंडेशन कार्ड, बहुत सारे अवार्ड मिले. तो आई वर्चुअली ग्रू अप अमंग्स हीरोज. ये इन सब लोगों ने मेरी परवरिश की है. तो जब आप बोलते हैं कि आप किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने के अलावा आप ऐसे बटालियन, ऐसे माहौल में रहते हैं, यही कारनामों में, यही किस्सों में आप रहे और इनके साथ ही आप सर्विस करते हैं, तो आप इंस्पायर होते हैं. सो आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव स्पायरल ऑफ ब्रेवरी इज स्टोक्ड अप. फिर इसके बाद, जैसे आपने कहा ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, उसके बाद हमारे अपने, मेरे कमांड के टेन्योर में जो 3 साल थे, हमारे को 66 अवार्ड मिले, 106 हमारी किल्स थे. फिर उसके बाद जाकर 2007 में हमारी बटालियन में एक अशोक चक्र मिला, अगेन कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तब हमारे को ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव का खिताब मिला, जो बहुत ही चुनिंदा, बहुत कम बटालियंस को मिलता है. तो ये एक माहौल होता है जो आपको इंस्पायर करता है. और यकीनन अभी आने वाले समय में भी हमारी बटालियन को, अब देखिए 2007 में जब कुपवाड़ा में हमारी बटालियन में एक और अशोक चक्र आया, कैसे आया? वो ये कि हर एक, वो भी पोस्थूमस अशोक चक्र था, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी. ही इज़ दी हाईएस्ट डेकोरेटेड सोल्जर इन इंडियन आर्मी. नायब सूबेदार चुन्नीलाल, अशोक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल. उसको वीर चक्र तब मिला था मेरे साथ पुंछ में, जब मैं सीओ था एक ऑपरेशन में. और मैं इनफैक्ट मेरा अगला प्रोजेक्ट वो है, मैं उस महान योद्धा पे किताब लिख रहा हूँ आजकल हार्पर कॉलिंस के लिए।
जब आप व्हेन यू आर लीडिंग योर मैन डिफिकल्ट डिसीजन, अभी आजकल क्या होता है बहुत सारे सीईओ से किताब लिख देते हैं हाउ टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस इन द बोर्ड रूम, इस तरह की बात
जी।
अब आपकी बात सुन के तो वो तो स्टेक्स बहुत छोटे लगते हैं, बट कभी आपने इतने लंबे टेन्योर के अंदर कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत डिफिकल्ट क्रॉस रोड्स पे हो वेयर यू हैव टू चूज लेसर ऑफ द टू इवल्स एंड यू हैव टू मेक अ वेरी हार्ड डिसीजन, वो हार्ड डिसीजन लेने के लिए आपके कोई पर्टिकुलर आप ऑपरेशंस या कोई इंसिडेंट रिमेंबर कर सकते हो जहाँ पे यू टू टेक अ वेरी टफ कॉल एंड यू नो सेट असाइड इमोशन और सम अदर ऑब्जेक्टिव्स एंड फोकस ऑन कि हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब हमें टू मेक दिस मिशन सक्सेसफुल?
मुझे एक वाक्य याद आता है कि एक हमें एक बड़ा जोखिम वाला स्पेशल ऑपरेशन करना था, मैं कमांडिंग ऑफिसर था और जैसा कि मैंने किताब में लिखा है, मुझे पहले ये बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि एक हमारा जो पहला एनकाउंटर हुआ टेररिस्ट के साथ में, मैं कमांडिंग ऑफिसर बना ही था और पहला एनकाउंटर, उसमें मैंने एक ऑफिसर खोया, मेजर रोहित शर्मा। मेजर रोहित शर्मा ने बहादुरी से लड़ा, शौर्य चक्र मिला पोस्थमसली, टेररिस्ट मार दिया उन्होंने, ही वॉज अ हीरो। लेकिन वो पहला ऑपरेशन में हमारे को ये मायूसियत मिली कि हमने एक ऑफिसर खो दिया, तो बड़ा मोराल सबका डाउन हो गया ये। और उसी के बाद मैंने कहानी में लिखा है कि फिर अगले ऑपरेशन में मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी वगैरह वगैरह। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसमें क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद हमारा ही एक ऑफिसर मेजर मनोज देशपांडे, हमारा एक ऑफिसर, ही केम फॉरवर्ड एंड ही wanted to marry the widow of Major Rohit Sharma. तो इनकी बातचीत चल रही थी। फिर हमारे को, अब मैं वापस आता हूँ, एक स्पेशल ऑपरेशन करना पड़ा और उस स्पेशल ऑपरेशन के लिए सबसे सूटेबल आदमी, और ये उसकी कंपनी थी, वो मेजर देशपांडे का था, रोल था। तब उस वक्त मुझे औरों ने भी एडवाइस किया और मेरे दिमाग में भी दुविधा थी कि मान लो इसको कुछ हो गया इस ऑपरेशन में, तो जो ही वॉज गोइंग टू मैरी हर, वो फिर उसको क्या हम मुझे वो खतरे में डालना चाहिए कि
शी वुड बिकम अ विडो अगेन
एसेंशियली? नहीं, अभी शादी नहीं हुई थी। तो एक बड़ा डायलेमा सा था मेरे दिमाग में, द सीईओ इन मी एंड द मैन इन मी, द ह्यूमन बींग इन मी। यानी कि बतौर सीईओ मेरा दिल कहता था ये करेक्ट डिसीजन है, ये सबसे सबसे मतलब काबिल आदमी है इस ऑपरेशन को लीड करने के लिए। लेकिन द मैन इन मी, बतौर एक इंसान, मैं सोचता था कि इसको मुझे सेफ रखना चाहिए और ऐसे रिस्की मिशन पर ना भेजें। आखिर दो ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि मैंने कहा कि नहीं, यही जाएगा। और वो दो चीज़ें ये कि एक तो मेरे अंदर जो सीईओ था, मैंने कहा नहीं, ऑपरेशनल डिसीजन तो ऑपरेशनल डिसीजन है, और दूसरा उस लड़के ने भी, उस यंग ऑफिसर ने भी आके मेरे सामने तकरीबन रोना शुरू कर दिया कि नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं तो छोड़ूंगा नहीं ऑपरेशन, मैं ही जाऊँगा। मुझे आप सोच
जिद
कि मैं ही जाऊँगा। वो भी एक बहादुर जाबाज ऑफिसर था, और देखिए फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव विनम्र, उस ऑफिसर को उस ऑपरेशन में वीर चक्र मिला।
यू मस्ट बी रियली प्राउड ऑफ ऑल योर मैन।
एब्सोल्युटली, मैं तो ये भगवान का वरदान मानता हूं, इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड दैट आई गॉट टू कमांड सच ब्रेव एंड करेजियस सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। मैं जहाँ पे भी गया हूँ कमांड में, इवन हायर रैंक्स में बाद में, ये तो ऑपरेशंस खुद लड़े हैं, इनके साथ तो हर ऑपरेशन में खुद, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, लेकिन उसके बाद भी जैसे बतौर कोर कमांडर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो जो जांबाज ऑफिसर और जो जांबाज ऑफिसर सॉरी सोल्जर्स जवान जो मुझे मिले हैं वो एक ब्लेसिंग है।
एक दुविधा वाली थोड़ी सी बात पूछता हूँ आपसे। फॉर ऑल द मेन दैट वर सेव्ड समटाइम्स अनफॉर्चुनेटली लाइव्स आर लॉस्ट,
यस
राइट, एंड जो आप जिन मेजर की बात कर रहे हो वो सैडली मार्टर्ड, राइट, यू ऑल्सो राइट इन द बुक कि उनकी फैमिली को आप कैसे फेस करते हैं
जी,
आपने लिखा। आई एम श्योर दिस हैपेंड, इट हैपेंस इन यू नो एवरीवन हु इज एट द स्टैचर दैट यू ऑपरेटेड एट। वो कॉन्वर्सेशन के लिए अपने आप को, मैं अगर सोचूं ना कि मेरे को आई हैव टू गो एंड बी आंसरेबल टू समवन एंड से दैट यू नो योर सन और यू नो जो भी आपके हस्बैंड है ही इज नो लॉन्गर देयर एंड that is not an easy conversation to
not at all
to do it, how does one still do it?
maine isliye maine kitab mein ye likha ki jitni bhi training ho jaye jitna bhi aapko experience ho jaye ek cheez ke liye aapko koi taiyar nahi kar sakta aur wo hai ye conversation. aur mujhe yaad hai ki jab unko maine kaise aap phone karte ho un dino mein mobile phone nahi the बहुत दूर चल के मुझे एक पीसीओ एसटीडी पे बूथ पे जाना पड़ा पीसीओ पे उस एसटीडी बूथ में कॉल किया तो वो कितनी खुशी खुशी उन्होंने हेलो कर्नल दुआ क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं इतने सालों से उन्होंने तो बच्चे और आप कैसे बताते हैं बताएंगे कि ऐसा हो गया है और कल बॉडी आएगी इतना मुश्किल है ये मैं इसका बयान नहीं कर सकता और उसका जो अगला सेंटेंस या चीख या जो आप सुनते हो वो आपकी छाती पर जिंदगी भर रहेगा मैंने मेरी वॉच पे यानी कि मेरी कमांड में जब मैं सीओ था मैंने 8 सोल्जर्स खोए हैं उसमें 2 ऑफिसर थे और 6 जवान ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई सब उड़ी के नाम पे बोलते हैं हाउस द जोश सब बहुत शाबाशी की बातें करते हैं बहुत बड़ी बातें होती हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई आपने ये किया मेरे लिए उड़ी इज ए डार्क डे क्योंकि उड़ी हुआ था 18 सितंबर को जब हमने 18 जाने खोई और बाद में एक और हॉस्पिटल में 19वां दैट संडे वॉज अ डार्क संडे मैं तो अपने आखिरी दिन तक वो बात नहीं भुला पाऊंगा ये चीजें मेरे हिसाब से एक सोल्जर के लिए एक अधिकारी के लिए सबसे ज्यादा भारी पड़ती हैं।
ना आप बोल रहे हो कि जो उसकी मिशन सक्सेसफुल होने की ग्लोरी है वो शॉर्ट लिव्ड होती है जो कॉस्ट है
देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको दूसरे उसमें कहा कि देर इज ए प्रोफेशनल इन यू एक बतौर एक कमांडिंग ऑफिसर प्रोफेशनल ऑफिसर मुझे बहुत मतलब फख्र महसूस होता है कि हमने ये ऑपरेशन पूरा कर लिया ये जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है हमारा जिसमें जान जा सकती है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जब मैं आपको बोल रहा हूँ जिस जब वो किक इन कर जाता है यानी कि जब वो इन्वोक हो जाता है और आप कोई जान खो देते हो तो बिल्कुल उसकी कोई खुशी नहीं रह जाती ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस तो है लेकिन उसकी ऑपरेशन की तो क्या खुशी रहेगी जब आपने अपने साथी खो दिया इसीलिए मैंने कहीं ये सेंटेंस एक बहुत ही एज ए वेरी सेटिस्फाइड मैन मैंने एक सेंटेंस लिखा है मैं बतौर कंपनी कमांडर मैं आसाम में था उल्फा से लड़ाइयाँ करते थे बतौर सीओ मैंने ये जे एंड के पूरी किताब लिखी उसके बारे में और बतौर ब्रिगेड कमांडर एलओसी पे रहा हूँ हमेशा मैं एसजीओसी भी नॉर्थ ईस्ट में काउंटर टेररिज्म में ही रहा हूँ मैं और फिर बड़े खुशी से मैं लिखता हूँ कि बतौर कोर कमांडर मैं फिर एलओसी पे था यानी कश्मीर में था जो एनकाउंटर हो रहे थे सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑफ माय लाइफ जो सर्जिकल स्ट्राइक है ऑपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ एंड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई तो आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट थिंग टू डू दैट इन माई करियर मुझे आखिर में ऊपर वाले ने ये एक ब्लेसिंग दी कि एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जिसमें कि कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई, तो मतलब वो खुशी फीकी नहीं पड़ती।
एंड इट्स वेरी हार्ड टू डू अ मिशन विदाउट कैजुअलिटीज।
वेल यू हैव टू, आप चाहते हैं तो हमेशा है कि कैजुअलिटीज ना हो, लेकिन आपको इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कैजुअलिटीज हो सकती हैं। यू ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट यू प्लान फॉर द वर्स्ट।
Let me read something that you wrote in the book, because I have a few lines that might contextualize this conversation further. At some point, you mentioned ki secrecy is the key to any successful operation.
Jim.
If you catch the enemy unawares, more than half your battle has been won.
Yes.
Right? This is very antithetical to the kind of stuff we see in popular culture एंड बॉलीवुड, यहाँ पे कि मतलब स्टेल्थ ऑपरेशन बहुत कम दिखाए जाते हैं, खुलेआम ऐसे वगैरह जारी होते हैं। व्हाई डू यू थिंक स्टेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट?
देखिए, इन रियल लाइफ स्टेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मैं बॉलीवुड पे कमेंट नहीं करूँगा।
नहीं, पर आप ये तो बता सकते हो कि कितनी बातें वो बोलते हैं वो झूठी हैं और क्या एक्चुअल रियलिटी क्या है।
वो तो ड्रामेटाइज करने के लिए चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ऐसे जा रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो जिसके कनेक्शन में मैंने ये लिखा है किताब में अपनी, और चाहे वो आप एक एनकाउंटर विद टेररिस्ट ले लो। अगर आपको पता है कि इस घर में टेररिस्ट छुपे हुए हैं, आपको इंटेलिजेंस मिल गई है, तो अगर आप उस घर में जाना चाहते हैं, तो अगर आप बड़े शोर के साथ जाएंगे और फायरिंग पहले खोल देंगे, तो फिर आपको वो यकीनन वो भी फायरिंग कर देंगे या वो भागने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। कई ऐसी बातें होंगी। ज़रूरी ये है कि आप स्टेल्थली ऑपरेशन करें। योर बैटल इज़ हाफ वन। अगर आप पूरे घर तक ही पहुंच गए जिसमें टेररिस्ट बैठे हैं और फिर फायर खोलने की देरी है, उनको पता भी ना चले, दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। जो सर्जिकल स्ट्राइक में अगर दुश्मन को भनक होती कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, तो फिर वो अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा देते, वो अपनी उनको तो कॉम्प्लेसेंसी थी कि भारत क्या करेगा, ये तो हम हमेशा टेररिस्ट भेजते हैं, ऐसे सुसाइड अटैक करते हैं, बड़े बड़े इन्होंने ऐसे अटैक किए हैं और हम अपने डिफेंसिव मेजर बढ़ाते हैं, हम कभी हमने पार जाके तो मारा ही नहीं।
उस टाइम पर कुछ डायलॉग्स भी चल रहे थे कंट्रीज के बीच में?
जी, कंट्रीज के बीच में नहीं चल रहे थे। हुआ क्या था कि उस टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी। ये 18 सितंबर को उड़ी पे अटैक हुआ, 21 सितंबर को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का भाषण था। तो अगले तीन दिन 18 से लेके 21 तक, क्योंकि सारे लीडर्स वहाँ पे लीडरान मौजूद थे, तो सब ने निंदा की पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान थोड़ा सा आइसोलेटेड सा फील करने लगा, क्योंकि 18 जाने एक होना मैंने रखता है, एक बहुत बड़ा उन्होंने टेरर अटैक किया था, तो उनका मतलब ये इट वाज ए नेगेटिव मार्क ऑन देम। और हमने जब डेट भी चुनी तो 28 इसलिए चुनी कि 25 सितंबर को श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का भाषण था एज आर फॉरन मिनिस्टर, शी वॉज अटेंडिंग टू स्पीक इन द जनरल असेंबली। तो हमने इसलिए कि मान लीजिए हमारे ऑपरेशन में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हमारे को कहीं उल्टा ना सुनना पड़े,
इंटरनेशनल इंसिडेंट ना बन जाए,
और इससे पहले कुछ वहाँ पर, तो हमने डिसाइड किया कि हम 25 के बाद करेंगे ये ऑपरेशन।
पर उन दिनों के बीच में वेट करना तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा, स्पेशली बिकॉज
नहीं, उन दिनों के बीच में फ्रैंकली तैयारी भी करनी थी, हमारे को ट्रेनिंग करनी थी, सही आदमी को सही जगह पहुंचाना था, प्लान अपने रिफाइन करने थे, कई चीज़ें ऐसी हैं जो किताब में भी कुछ चीज़ें लिखी हैं जो लिखी जा सकती हैं, और फिर हमने जाके फिर आर्मी हेडक्वार्टर को ब्रीफ करना, लीडरशिप को ब्रीफ करना, तो कुछ तो समय हमें चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक फैक्टर दे रहा था कि आपने मेरे से पूछा कि कोई इंटरनेशनल इंसिडेंट हो रहा था, इंटरनेशनल ये इंसिडेंट था, ये भी हमने दिमाग में रखा।
एंड ये आप मतलब इंस्टेड ऑफ बीइंग कि हम तो कल ही अटैक कर रहे हैं, जो यू क्यू केप्ट इन माइंड कि देश की बाहर एक छवि है और वो ऐसा ना हो कि खराब हो जाए अगर हम एब्रप्टली एक्ट करना शुरू कर दें, है ना। लेकिन फिर ये तो एक ये होरी वाली सबसे जो सबसे पॉपुलर आपके उसके अंदर वो घटना है, लेकिन एक मैं आई स्वेयर मैं ये पैसेज पढ़ रहा था, मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैं इट सेड सो आई पिक्ड अप टू पॉड्स ऑफ 84mm रॉकेट्स, ईच कंटेनिंग टू रॉकेट्स. दीज वुड बी नीडेड टू ब्लास्ट थ्रू द वॉल्स बिहाइंड द टेररिस्ट वेयर दे वर हाइडिंग. ईच ऑफ दीज पॉड्स वेट अबाउट 15 kilos. एट सम पॉइंट इन योर करियर, आई एम सॉरी, मैं आर्टिलरी के बारे में कम समझता हूँ, आपके पास दो रॉकेट लॉन्चर थे या रॉकेट थे और आप सीधा एक दीवार ब्लास्ट करने जा रहे थे?
नहीं नहीं नहीं, आई मस्ट एक्सप्लेन दिस. ये एक ऐसा एनकाउंटर था टेररिस्ट के साथ जो एक गांव में शुरू हो गया अचानक. हम लोग नॉर्मली एक कोऑर्डिनेट सर्च करते हैं तो कॉर्डन उसके आसपास लगाते हैं, एक बड़ा सा रिंग लगाते हैं ताकि वहाँ से अगर कोई भागने वाले टेररिस्ट हो तो उनको ये रोक सकें. फिर धीरे धीरे सर्च पार्टी हमारी अंदर बढ़ती है और टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर करती है. ये एनकाउंटर यानी कि उन्होंने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी इससे पहले कि हमारे कॉर्डन लगता. मैं ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहीं और गया हुआ था और वहाँ से मैं एक ऑफिसर के साथ और अपनी प्रोटेक्शन पार्टी के साथ इधर पहुँचता हूँ. और मैं फिर एक जगह जहाँ रोड है, रोड ख़त्म हो जाती है, यहाँ से आपको पैदल चलना है पहाड़ी के ऊपर जंगल के बीच में. तो पहाड़ी रास्ते पे अगर हम, रास्ते भी नहीं है मतलब पहाड़ों में चल रहे हैं पैदल जंगल में, तो वहाँ पर हमारी एक यूनिट से दूसरी तरफ से एक गाड़ी आई हुई थी एमनीशन लेके, क्योंकि एमनीशन हमारे को रिप्लेनिश करना था. अचानक फायरिंग स्टार्ट हो गई थी तो इनको एमनीशन हमारे सोल्जर्स को, जवानों को और चाहिए था. अब जितने भी मेरी प्रोटेक्शन पार्टी वाले थे वो उनके पास अपनी मशीन गन या AK राइफल, अपना एमनीशन और ये सब था, ग्रेनेड्स वगैरह, वो तो इससे लैस थे. मैं वेपन नहीं कैरी करता था एनकाउंटर में. और मैं हमेशा कहता था कि अगर मैं अपने साथ, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनता था और वेपन नहीं कैरी करता था, अगर मैं वेपन ले जाऊंगा तो फिर मेरी भी टेम्पटेशन होगी कि मैं भी उसको गोली चलाने लग जाऊं, तो फिर मैं सोचने का काम, प्लानिंग का काम नहीं करूंगा, मैं भी अपना पहले गोली चलाऊंगा. अगर मेरे हाथ में होगा, जब गोली चल रही होगी तो मैं भी गोली चलाऊंगा. और मैं, मेरे को सब कहते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो रख लो, मैं कहता था नहीं, मेरी प्रोटेक्शन के लिए आप लोग.
आप हैंड गन भी नहीं रखते थे?
कुछ भी नहीं.
सो यू वर जस्ट थिंकिंग, स्ट्रेटजी बना रहे
थे. आई एक्सप्लेन, सो आई मस्ट थिंक अहेड, दैट इज माय जॉब, ये मेरा मानना था. अब क्योंकि मेरे हाथ खाली थे, वहां एमनीशन आया हुआ था, उनको ये मैंने एक्सप्लेन, जो आपने अभी सेंटेंस पढ़ा, रॉकेट लॉन्चर के रॉकेट्स की ज़रूरत थी जिससे कि वो जिस घर में छुपे हुए हैं उसकी दीवार को तोड़ सकें, लेकिन रॉकेट नीचे पड़े थे. अब उनको ऊपर ले जाए कौन, क्योंकि वो सारे जितने जवान थे वो सब तो ऊपर, दे वर ड्रॉन इनटू द अटैक, इनटू द एनकाउंटर. मेरे हाथ खाली थे, मेरे पास हथियार ही नहीं था. तो मैंने दो पॉड उठा लिए, एक पॉड में दो रॉकेट होते हैं, तो यानी कि मैं चार रॉकेट उठा के चल रहा था,
15-15 किलो के,
15-15. तो मैं वो उठा के चल रहा था ऊपर, हमें एक आध घंटा ऊपर, एक घंटा लगा पहुंचने में. और जब वो वाकया हुआ, जब मेरे नीचे से टेररिस्ट ने गोली मारी मेरी टांगों के बीच में,
तो जब, अभी लोगों ने नहीं पढ़ी किताब तो आप वो एक्सप्लेन कर पाओगे, तो
वो ऐसा हुआ कि जब मैं ऐसे चल रहा था तो कैप्टन विनोद, जो कि उस एनकाउंटर में इंचार्ज था, उसने मुझे कहा कि सर ये अभी हमारा कॉर्डन लगा नहीं था, ये फायरिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये बड़ी गंदी सिचुएशन हो गई है. तो कहता है जिस तरफ से आप आ रहे हो उस तरफ कम से कम एक LMG ग्रुप, मतलब एक मशीन गन ग्रुप यहाँ लगा के छोड़ दो, ताकि यहाँ से कोई नीचे भाग आए तो कम से कम ये लोग उनको रोकें. तो मेरी प्रोटेक्शन पार्टी में हम 5 लोग थे, तो मैंने वहाँ पर छोड़ दिए.
आप अकेले?
तीन छोड़ दिए. तो मैं था, मेरे साथ मेजर सावंत एक ऑफिसर था, एक बहुत जाबाज ऑफिसर था वो, बहुत एक्सपीरियंस्ड, और एक जवान और था. तो हम तीन चल रहे थे ऊपर की तरफ. तो जैसे इनको हटाया तो फिर मैं आगे हो गया, तो इसने, मेजर सावंत ने आगे आने की कोशिश की, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं यार, मैं भी उतना ही आगे चल सकता हूँ. ऐसे मैंने मजाक किया और मैं चलता रहा. तो मैं आगे चल रहा था, मेरे पीछे ऑफिसर और एक जवान चल रहे थे, शायद दो जवान चल रहे थे, ऑफिसर दो जवान. तो एक जगह पे एक नाली सी थी, खाई सी थी, तो वो थोड़ा सा मुझे, मतलब थोड़ा मेरी पहुंच से बाहर लग रहा था जमकर. मैं अपने आप को एक्सटेंड करके उस तरफ खड़ा हुआ, दोनों तरफ मैं थोड़ा बैलेंस संभाल रहा था. तो मेरे हाथ में रॉकेट्स थे और मैं उस खाई को पार कर रहा हूँ, जंगल का इलाका है. तो एक मिनट के लिए बैलेंस संभालने के लिए जब मैं रुका, तो मैंने अचानक मेजर हिमांशु सावंत ने आवाज़ दी, हे, ऐसे आवाज़ आई. और मैंने पीछे देखा, क्या कर रहा है, क्यों चला रहा है ये. पीछे जैसे देखा, उसने मेरे ऊपर गोली चलानी शुरू कर दी. दरअसल हुआ क्या था कि उसी खाई में एक टेररिस्ट था, वहाँ से जो भाग के आ रहा था, जिसको रोकने के लिए हमने अपनी मशीन गन वहाँ पे छोड़ी थी, और उसने ऐसे अपनी सिर निकाला और उसने राइफल मेरी टांगों के बीच में से मेरे को फायर करनी थी, लेकिन मेरी टांगें थोड़ी एक्सटेंडेड थी और सावंत ने एक्चुअली हिमांशु ने मेरी टांगों के बीचों बीच उसको गोली मार दी। ये सब मैं आपको अब समझा रहा हूँ, उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है। ये उसने, ये तो अच्छा है कि उसका निशाना अच्छा था, वरना उसकी गोली मुझे भी लग सकती थी। फिर मैंने वहाँ से जंप किया और अगले खेत के वो दूसरे लेवल पे गिर गया और
आपके एंकल में चोट आ गई थी।
एंकल में चोट आ गई थी, विच इज़ वेरी प्रेफरेबल देन गेटिंग हिट बाय अ बुलेट। तो ये एक ऐसा एक क्लोज सेव हुआ दुर्गे माता की कृपा, और आई थिंक आई हैव टू थैंक गॉड एंड हिमांशु सावंत फॉर दैट।
That is insane that he had that presence of mind to see कि वहाँ से बंदा कर रहा है,
क्योंकि उसने उसकी भी गोली उसने भी गोली चलाई, इसने भी गोली चलाई, और मेरे को ऐसे लगा कि मेरे यहाँ सामने से गोली गई है, मतलब
what gun did he have जो आप
AK rifle
AK rifle तो that must be a bunch of bullets no not just
yes,
one
yes it was a bunch.
So they whizzed right in front of you
I thought I could smell something.
So other close encounters that you can recall very very closely, तो बहुत close है
जी। एक encounter में हम एक ढोक एक terrorist fire कर रहे, terrorist एक ढोक के अंदर थे, ढोक यानी कि कच्चा घर होता है झोपड़ी से, उसके अंदर उसकी दीवारें मजबूत होती हैं, तो उस
वो जो उपलो से बनता है घर
नहीं वाला मिट्टी का होता है या ईंटे का भी, ईंट भी हो सकती है बट मिट्टी का होता है, लेकिन बहुत थिक मिट्टी होती है, मिट्टी की दीवार होती है। वो अंदर से फायर कर रहे थे, तो पहाड़ों में खेत ऐसे स्टेप फील्ड होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप फील्ड में थे, तो सिर ऊपर उठा के हम लोग फायर कर रहे थे। अब धीरे धीरे उनका एम्यूनिशन ख़त्म होने लगा, क्यों हमने घेरा डाला, कॉर्डन अच्छा इफेक्टिव था, वो निकल तो सकते नहीं थे, हम फायर कर रहे थे, हम आड़ में थे, हम लोग ग्रेनेड्स फेंक रहे थे, हम भी ग्रेनेड फेंक रहे थे, वो भी कभी कभी ग्रेनेड, धीरे धीरे उनकी फायरिंग कम होने लगी, तो मुझे लगा कि अब हो सकता है कि कोई भागने की कोशिश करे, और हम लोग चार पांच लोग ऐसे थे, और अचानक मेरे को पीछे से, मेरे इधर पीछे कमांडो, उसका नाम कमांडो है नफसुदार प्रीतम, प्रीतम नाम था हमारे जवान का, मेरे पीछे वो था, मुझे ऐसा लगा उसने मुझे धक्का दिया, जैसे मुझे धक्का लगा और मैं पीछे मुड़ा, तब मैंने देखा प्रीतम ने एक आदमी को की टांगें पकड़ी हुई थी और उसको उसके ग्रोइन में उसको किक कर रहा था। हुआ ये था कि एक टेररिस्ट वहाँ से भागा और हमारे कॉर्डन को तोड़ के बीच में से भागने लगा, हमारे बीच में उसको चोट, गोली भी लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी, उसका खून मेरी शर्ट को लगा, धक्का उसका मुझे लगा, लेकिन मेरे पीछे जो प्रीतम था उसका फेस इस तरफ था, हाँ। और उसने उसको उसकी टांग पकड़ ली एंड लिटरली देन किक्ड हिम, उसका हथियार उसके हाथ से छूट गया और वी गॉट हिम दैट डे,
बट ही लिटरली ब्रोक
द कॉर्डन एंड ही उसका मतलब मेरे शर्ट पे थोड़ा सा खून भी लगा उसका।
व्हेन द मेबी सीम्स लाइक एन एलिमेंट्री क्वेश्चन बट द फर्स्ट टाइम यू सॉ ब्लड वर्सेस द 10th टाइम यू सॉ ब्लड, सम बैटल हार्डनेस मस्ट हैव कम।
सो सही मायनों में मैंने जैसे किताब में लिखा और आपने भी कहा था, मैंने MBBS फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हीमेटोलॉजी करना पड़ता है, अपना ही ब्लड सैंपल लेना पड़ता है और सारे ब्लड टेस्ट करते हैं आप, तो ब्लड की तो ऐसी ज़्यादा समस्या मुझे हुई नहीं। आई नहीं बट देन फौजीज आर हार्डन्ड, सोल्जर्स हार्ड से हो जाते हैं कि एट द साइट ऑफ ब्लड, ऐसा नहीं कि बस खून देखा तो आपको गश्त पड़ जाएगा।
आपने इससे पहले बात करी थी आपको जिस तरह की आपकी ट्रेनिंग रही, मतलब आप एक ऐसे बटालियन में थे जिसके किस्से इतने
जी
निराले थे, जिन सब लोगों को बेस्ट से बेस्ट मेडल्स और अचीवमेंट्स से सम्मानित किया गया था, तो आपने बोला यू आर अराउंड वेरी करेजियस मैन राइट, बहुत करेजियस आदमियों से आपका हमेशा ही पाला पड़ा। एक इसको एक्सट्रैपुलेट करने की कोशिश करते हैं सिविलियन पॉपुलेशन में लगाने की, आई एम श्योर टू यू अ लॉट ऑफ द सिविलियन फियर्स आर अनफाउंडेड राइट, जो लोग छोटी छोटी बातों पर डरते रहते हैं, मे बी वट कैन पीपल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेचुरल करेज दैट पीपल इन द आर्मी हैव एंड यूज इट इन देयर ओन लाइव्स।
आई वुड से दैट जैसे एक सोल्जर है उसको अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है क्योंकि उस बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियर ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग होती है, और दूसरा उसको भरोसा अपने ऊपर इसलिए होता है क्योंकि देर इज सिक्योरिटी इन नंबर्स. उसको अपने साथी पे बहुत भरोसा है, अपने बडी पे, अपने सेक्शन पे, अपनी प्लेटून पे. उसको हमेशा ये नाज होता है कि मेरे को कुछ हो जाएगा ना, ये आएंगे मेरे लिए. तो मैं समझता हूँ अगर सिविल लाइफ में भी लोग ऐसे मिलजुल के रहें, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो कोई भी सपोर्ट ग्रुप हो, जब ग्रुप होता है, RWA है, आपके एसोसिएशन हो, कोई भी, मतलब लोग अगर साथ मिल के रहेंगे तो देर इज़ अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी. तो हर आदमी बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जी सकता है. सो आई थिंक देर आर सच लेसन्स टू बी लर्न. दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि एक सोल्जर बड़ा पॉजिटिव सोच के चलता है. कभी ये नहीं सोचता आज मैं बाहर जा रहा हूँ ऑपरेशन में, आज ऑपरेशन पेट्रोलिंग हो गई, अगर एवलांच आ गया तो मैं मर जाऊँगा, गोली मुझे लग गई तो क्या होगा. तो ही इज़ नॉट थिंकिंग लाइक दिस. वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता है.
मैनी ऑफ अस थिंक लाइक दैट द व्हाट और ही इज़ नॉट थिंकिंग लाइक.
यस. सो हमारे को भी ये ज़रूरत है अपने इमेजिनरी फियर से हट के हार्नेस द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, आप कोई चीज़ चाहोगे तो होगा. वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, ओम शांति ओम में,
अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो
पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है. यानी आप चाहो किसी चीज़ को एंड बी पॉजिटिव, हार्नेस द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. मतलब अगर आप नेगेटिव होते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो फिर हमेशा आप आशंकाओं से घिरे रहेंगे.
एंड एज फार एज योर ओन पॉजिटिविटी इज कंसर्न, कई बार ऐसा होता होगा इन योर इलस्ट्रियस करियर कि मे बी यू नो यू मेट सम अदर ऑफिसर्स हू वर हायर देन यू और पीपल इन द गवर्नमेंट जो दे माइट नॉट सी आई टू आई विद यू.
यस.
एंड व्हाट हैपेंस देन व्हेन देयर इज एन हीटेड आर्गुमेंट? आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट सिविलियंस नाउ बट लाइक इन योर करियर.
वेल, आर्मी अलाउज यू टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन
डिस्पाइट हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग हायरार्की एंड चेन ऑफ कमांड.
जी, इट अलाउज यू. देखिए, वो मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ आपको. आप अपना ओपिनियन जरूर एक्सप्रेस करें, ये आपको छूट होती है, लेकिन उसके बाद डिसीजन जो है वो सुपीरियर ऑफिसर लेगा. तो डिस्कशन स्टेज खत्म हो जाती है जब डिसीजन ले लिया जाता है, लेकिन जब डिसीजन ले लिया जाता है तो फिर आप उसको वैसे ही एग्जीक्यूट करें जैसे कि वो आपका ही डिसीजन हो. मान लीजिए वो आपके, आप अभी भी उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपको डिसीजन दिया गया कि ये करना है, तो फिर वैसे ही करना जैसे कि जैसे आपको करना चाहिए.
अनक्वेश्चनेबल है.
मान लीजिए अगर हमारे को डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम इजाजत नहीं देते सर्जिकल स्ट्राइक करने की, तो मैं क्या जाके कर सकता था? उन्होंने हाँ कहा तभी हमने किया. तो इसलिए आर्मी में ये डिस्कशन स्टेज तक डिस्कशन लागू है, लेकिन डिसीजन स्टेज के बाद फिर एक्ट एज इफ इट इज़ योर ओन डिसीजन.
एंड आपने किताब के अंदर ये भी लिखा था, देखो आज तो बहुत सारे आर्म फोर्सेस के लोग डिफरेंट कैपेसिटीज के अंदर अपने फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं.
जी.
आपने उसके अंदर लिखा हुआ ये ऐसा वाला वक्त भी था 90,000 से पहले भी जहाँ पे लैंडलाइन से ही आप बात कर सकते हो, बहुत दूर SG से बात करते हो, STD से बात कर सकते हो. तो उन दिनों में लाइक अ सेंस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर फैमिली, डिड इट फील मोर प्रोमिनेंट?
यस, इट फेल्ट मोर प्रोमिनेंट. आप फोन पे बात कभी कभार करते थे, उसके भी पहले का टाइम ले लो जब STD भी नहीं थे, जब ट्रंक कॉल नहीं होती थी. तो जैसे आजकल आप इंस्टेंट कम्युनिकेशन पे हो, व्हाट्सएप हो, वीडियो कॉलिंग हो, कितने और ऐसे जरिए हैं, बट मोस्ट इंटीमेट आर व्हाट्सएप एंड वीडियो कॉलिंग विच यू आर ऑलवेज मैसेजिंग और टॉकिंग टू ईच अदर.
अब कुछ समय VR आ जाएगा.
जी. जब मैं मेजर था तो मैं मेरा छोटा लड़का उस टाइम 6 महीने का था. मैं 2 साल कारगिल में ब्रिगेड मेजर के पोस्ट पे रहा. मैं 3 बार 2 साल में छुट्टी गया. पहली दफ़ा जब मैं छुट्टी गया था तो मेरा बेटा तकरीबन 1.5 और 2 साल के बीच की उम्र का रहा होगा.
योर यंगर सन?
माय यंगर सन. मैं आई वाज ऑन 10 डेज लीव.
दैट्स ऑल
दैट टाइम. हाँ, 10 दिन छुट्टी पे था, 10 या 11 दिन ऐसे था. तो मेरा बेटा मेरे पास मेरी गोद में नहीं आया, जैसे होता है कि छोटे बच्चे स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाते हैं, वो मुझे पहचानता नहीं था। उससे पूछो पापा कहाँ, कौन है पापा, कहाँ है, तो मेरी फ़ोटो को इशारा करता था, मेरी फ़ोटो पड़ी हुई थी टीवी के ऊपर, मेरी फ़ोटो को बोलता था पापा, और ये नहीं पहचान पा रहा कि मैं वही हूँ। तो माय हार्ट वुड क्राई, दिल रोता था कि मैं अपने बेटे को अपनी गोद में उठा नहीं पा रहा हूँ, आया क्यों हूँ छुट्टी। और अगर अगर आज आज के हालात में आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, रोज़ अपने बच्चे से बात कर रहे हो, वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन का फ़र्क पड़ेगा ना। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। मैं इसलिए इस बात को बीच में लाया। मेरा छोटा बेटा जब 9 साल का था तो मैं उसके साथ तकरीबन 2.5 साल रहा था, ऐसे हमारी पोस्टिंग्स थी। तो मतलब आज कम्युनिकेशन जो इतना अच्छा है, तो उससे मुझे खुशी है कि आज के जवानों को वो सब नहीं भुगतना पड़ता। कम्युनिकेशन होने से मतलब थोड़ा सा उस चीज़ का एहसास कम हो जाता है।
पर ये तो बहुत रियल लॉस ऑफ मीनिंग है कि आप देश के लिए लड़ रहे हो नॉन स्टॉप, फिर आप घर आते हो कि मेरा अपना परिवार है, और आपको आप ही का बेटा रिकग्नाइज नहीं करता, तो
जी
अब उस तरह की ग्रीफ को आदमी किसके पास लेके जाए।
बिल्कुल, वो रिकग्नाइज नहीं करता, मैं उसको टॉफ़ी दूंगा तो चॉकलेट दूंगा तो खुशी से ले लेता है, लेकिन गोद में नहीं आ रहा है। और मुझे याद है धीरे धीरे जब उसको समझ आई या जैसे भी हुआ, मेरे छुट्टी जाने से एक दिन पहले वो मेरी गोद में आया। माई हार्ट क्राइड, मेरा मन किया मैं नहीं जाऊँ वापस कल।
देर इज़ नो डाउट कि मतलब आपके इस इंसिडेंट से ये झलक जाता है कि आर्म फोर्सेज में लोग कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। आई मीन फैमिली लाइफ तो चलो एक चीज़ है, पर थिंग्स चेंज यू नो एज आप रेगुलरली और मिलने लगे, फिर वो जो कुछ ईयर्स में जैसे वो एक एंडियरमेंट नहीं थी वापस आ गई फिर।
यू टॉक अबाउट माई सन?
या नहीं,
ऑफ कोर्स। वो तो मतलब उस टाइम बच्चा था, समझता नहीं था, उसके बाद तो जैसे बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली
बट आई एम सेइंग यू नो बिकॉज सो यू डिड 4 decades राइट, यू मस्ट हैव ट्रेंड योर फैमिली इन अ डिफरेंट वे राइट, कि उनको उनको आपने या तो स्ट्रांग बना रखा होगा कि अब मैं हूँ नहीं, आपको बिहेव करना है या ऐसे रहना है।
ऐसे नहीं होता, होता ये है विनम्र कि देखिए आर्मी में जो फैमिली का एक बहुत ही अहम रोल होता है आपकी अपनी सर्विस में, वो इसलिए कि आप कैसे सर्विस कर पाओ ये डिपेंड करता है कितनी सपोर्ट आपको आपकी फैमिली देती है। अगर मान लो आपकी वाइफ आपको रोज़ ही चिट्ठी लिखे या फ़ोन पे बोले हमेशा कि मैं क्या करूँ, मेरे को अकेला छोड़ा हुआ है, मैं बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, ये मान लीजिए ऐसे, वेयर एज ऑन द अदर हैंड यू डोंट हेयर एनी कंप्लेंट्स। वो हमेशा एज ए मतलब लेडीज़ का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो हमेशा बच्चों को अकेले माँ और बाप दोनों का प्यार और दोनों की गाइडेंस देके बड़ा करते हैं, जहाँ जब फादर साथ में नहीं होता वो हमेशा सारे उनके काम अपने आप करते हैं, वो कंप्लेन ना करें आपको, आपके बच्चे कंप्लेन ना करें। जब आप अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड देन यू आर स्टेइंग इन अ सेपरेट स्टेशन, नॉन फैमिली स्टेशन, व्हेन यू गो बैक तो चिल्ड्रन, बच्चे भी तो कंप्लेन कर सकते हैं कि पापा आप तो होते नहीं हो हमारे पास, पर वो समझते हैं इस बात को। तो सपोर्ट सिस्टम जो है, सपोर्ट अगर आपको अपनी फैमिली से मिलता है तो आप उछक होके आप खुल के अपनी अपनी सर्विस अपने देश के लिए कर सकते हो, ना कि विद ए प्रेशर पॉइंट। नहीं तो आप प्रेशर पॉइंट में रहोगे हमेशा, मेरा परिवार ये सोचता है मैं ऐसे यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ, तो वो ज़रूर आपकी सर्विस में बाधा पड़ेगा।
तो योर फैमिली हैज बीन सपोर्टिव थ्रू आउट?
एब्सोल्युटली, I salute my family and I'm sure that is the case in the army, the way families are groomed, sabhi zyada tar logon ko aisi support milti hai.
So you retire and then eventually aapka news ke andar kai baar naam aata hai around trying to unite the air force, the navy and the army, right? So since I am not too much familiar with this work, yaar log thoda jo bahut jante honge, क्या आप उस बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपको ऐसा मतलब इन इन तीन डिविजन्स के अंदर व्हाई इज देयर अ लैक ऑफ कोहेजन एंड व्हाट हैव यू डन इन दैट एरिया?
नहीं, ऐसे है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद सारी विश्व में, पूरी दुनिया की आर्मीज में, आर्म फोर्सेस में ये तय हो गया था, डिसाइड किया था, मतलब उन्होंने रियलाइज़ किया था कि तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स को इंटीग्रेट होकर लड़ना पड़ेगा। अभी अलग अलग लड़ाइयाँ नहीं हो सकती हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने, यूएस ने, यूके ने, सब बाकी देशों ने इंटीग्रेट कर ली है अपनी फोर्सेस। समहाउ हम लोगों ने नहीं किया। और फिर कारगिल की लड़ाई 1999 में हुई, तो उस वक्त ये महसूस किया गया। फिर बहुत सुब्रमण्यम रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हुई, फिर मिस्टर अडवाणी लेडे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जब डिसाइड किया गया कि नहीं, हमारे को तीनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चाहिए इन तीनों के ऊपर, CDS। तो उस वक्त उन्होंने आइडियाज तो बना दिया, इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर यानी कि CDS का हेडक्वार्टर तो बना दिया, लेकिन CDS अपॉइंट नहीं किया। कुछ एक और भी स्ट्रक्चर्स खड़े करें इंटीग्रेटेड, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इकट्ठे काम करें, लेकिन CDS को अपॉइंट नहीं किया। CDS अगले 20 साल तक अपॉइंट नहीं हुआ। तो जब मैं कश्मीर से, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद प्रमोशन पे आया मैं इधर दिल्ली, तो मैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स का चीफ था। बतौर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस बनाने की कोशिश की जिसमें कि हम इंटीग्रेट कर पाए इन स्ट्रक्चर्स को, और CDS कैसे बनेगा और CDS को कैसे, वो हमने कई प्रेजेंटेशंस दी, प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेजेंटेशन दी, जिसके बिना पे 2019 में फिर उन्होंने CDS का ऐलान किया। और जनरल बिपिन रावत, जैसे हम जानते हैं, हमारे पहले CDS हैं। अब वो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन चालू है, थोड़ा उसको सेटबैक हुआ जनरल बिपिन रावत की आकस्मिक मौत के बाद, लेकिन अब दोबारा CDS दूसरे पॉइंट हो गए हैं जनरल चौहान, और अब वो कार्रवाई जोरों से चल रही है।
तो आपको ऐसा अनुमान है कि आगे जाके हमारे तीनों विंग्स साथ में और इंडिपेंडेंट और साथ में ऑपरेट करा करेंगे, जैसे अभी बिल्कुल ही नहीं करते हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी बिल्कुल नहीं करते हैं। अभी करना, काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ें, कई चीज़ें इकट्ठे करनी शुरू कर दी हैं। एकीकरण हो गया है आफ्टर कारगिल वॉर, लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ, क्योंकि CDS ही अपॉइंट नहीं हुआ। तो सब अपने अपने, थोड़ा बहुत पुल होती है अपने डायरेक्शन में। अभी आने वाले समय में ये इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स ही होंगे, दे विल बी वन स्ट्रक्चर, दे विल बी थिएटर कमांड, जो एक थिएटर में सारे तीनों फोर्सेज इकट्ठी होंगी।
थिएटर,
उसको थिएटर कहा जाता है, जैसे आजकल कमांड से, तो एक थिएटर कमांड बोलते हैं हम उसको।
करेक्ट। मैं आपसे एक और सवाल करूंगा और फिर आपका यदि कोई लोगों के लिए संदेश हो तो आप उसको रख सकते हैं। थोड़ा मुश्किल सवाल है, मतलब क्योंकि मैंने शायद, मैं इसके बारे में सोच रहा था यहाँ पे आते हुए कि मैं आपसे पूछूंगा, आप शायद इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे। एक रोमन फिलोसोफर हैं मार्कस ऑरेलियस नाम के, उन्होंने एक लैटिन में एक वर्ड, एक छोटे दो वर्ड्स का वो फेमस करा बहुत ज़्यादा, मेंटो मोरी, विच मीन्स रिमेंबर डेथ, मृत्यु को याद रखें। तो वो बहुत पॉपुलरली लोग उसके टैटू बनवाते हैं, कोई अपने डेस्क पे स्कल रखता है, यू नो, एक मॉर्टैलिटी का एहसास करने के लिए।
जी।
आप का जब प्रवेश हुआ आर्म फोर्सेस में वर्सेस अब, आपका फिलॉसफी अराउंड मॉर्टैलिटी बदला तो कैसे बदला, पहले क्या था अब क्या है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेथ नाउ?
मेरी समझ से, एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, मेरी समझ से एक अच्छा सोल्जर वो होता है हु विल से डोंट फियर डेथ। मतलब आप तो कह रहे हैं कि रिमेंबर डेथ, ऑलवेज कीप दैट एट द बैक ऑफ योर माइंड, कि भी एक दिन तो सबने जाना है। वेयर एज अ सोल्जर सेज, एक दिन तो सबने जाना है, बट देर इज नो बेटर डेथ देन डाइंग फॉर वंस कंट्री। तो आई थिंक मेरा भी हमेशा ये, जस्ट लाइक एनी सोल्जर, रहा है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ बट मेक इट काउंट। अगर डेथ बैटलफील्ड पे आए, इससे ज़्यादा अच्छी और कोई चीज़ नहीं।
और परहैप्स डोंट डाइ इन ग्लोरियस डेथ इवन इफ यू आर अ सिविलियन, डू समथिंग वर्थवाइल।
यस,
राइट। जनरल दुआ, आपने मेरे को बिल्कुल स्टंप कर दिया आपकी बातों की ग्राविटास से. तो इफ आई एम श्योर देर आर मेनी पीपल वॉचिंग लिसनिंग टू दिस, इफ यू हैव अ स्पेसिफिक मैसेज कि आप कुछ दुनिया को कहना चाहते हैं, कुछ मे बी सम पार्टिंग वर्ड, सम एडवाइस, समथिंग यू लर्न दैट मे बी यू वॉन्ट टू शेयर, द प्लेटफॉर्म इज योर्स.
थैंक यू. आई वुड लाइक टू लीव अ मैसेज फॉर द यूथ. आज की युवा पीढ़ी को मैं कुछ कहना चाहूँगा, और ये, यू डोंट हैव टू ज्वाइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री. मतलब अगर आप आर्मी में, आर्म फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आना चाहते हैं तो यू आर वेलकम. वी वॉन्ट गुड सोल्जर्स लाइक यू. लेकिन टू दोज हु कुड नॉट और टू दोज हु डोंट वॉन्ट टू, आई से दिस दैट यू डोंट हैव टू ज्वाइन द आर्मी टू सर्व द कंट्री. यू कैन सर्व द कंट्री by doing what you do to the best of your ability, because the growth story of India needs all of you, all the skill sets, the engineers, the architects, the software guys, the carpenters, the farmers, the all skill sets are required for the growth story of India, and you are going to take the country forward. Yes. If you want to do something for a soldier, be a good citizen. बहुत इतना आसान नहीं है टू बी अ गुड सिटीजन. टू बी अ गुड सिटीजन आपको, यू हैव टू वॉक द एक्स्ट्रा माइल, आपको यू हैव टू गो एंड पार्क योर कार इन द पार्किंग और योर मोटरसाइकिल इन द पार्किंग एंड देन वॉक बैक टू योर डेस्टिनेशन रादर देन पार्क क्लम्जीली एट सम प्लेस एंड इनकन्वीनियंस द ट्रैफिक. अगर आपके पास रैपर है किसी चीज़ का तो आप उसको फेंकें नहीं, वेट कि आपको कहीं गार्बेज कैन मिलेगा तब फेंकेंगे, नहीं मिलेगा तो आप उसको साथ जेब में घर ले जाएं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने कोविड के दौरान देखा कि कितने लोग इतने अच्छे स्मार्टन्स, गुड सिटीजन सामने आए. सो आई वुड रिपीट, बी अ गुड सिटीजन, एंड इफ़ यू हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर अ सोल्जर, यू वांट टू रिस्पेक्ट अ सोल्जर, बी अ सिटीजन वर्थ डाइंग फॉर. जय हिंद.
वाओ, थैंक यू सो मच फॉर दैट incredible message. As far as your public profiles and your book is concerned, to ek bar aap zara book ka naam, book kahan mil sakti hai, uske bare mein, if you can.
Dekhiye, ye kitab hai India's Brave Hearts. Ye it's a paperback available on Amazon, Flipkart, किंडल पे भी अवेलेबल है. जगरनॉट बुक्स जो पब्लिशर है उनके ऐप पे भी अवेलेबल है. ये चार लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है. हिंदी में भारत के जांबाज, प्रभात प्रकाशित, कन्नड़ा में भारत द कलीगाडू, मैं शायद नाम गलत बोल गया हूँ,
कोई बात नहीं, कन्नड़ा में लोग समझ जाएंगे, जी, लोग अच्छे
हैं. वो भी है, अवेलेबल है. और ये एक आसमीज में ट्रांसलेशन इज अंडर वे. ये पॉकेट एफएम पे एक ऑडियो बुक के तौर पे भी अवेलेबल है ऑन पॉकेट एफएम ऐप. तो नाउ आई एम राइटिंग, आई एम ऑन कपल ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स. एक मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ, वो है इसकी कहानी नायब सूबेदार चुन्नीलाल की, जो हाईएस्ट डेकोरेटेड सोल्जर है, अशोक चक्र, वीर चक्र और सेना मेडल, मेरी यूनिट का एक जाबाज जवान. और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट और, उस पर मैं अभी किताब लिख रहा हूँ.
Wonderful. It's been an absolute pleasure to talk to you. It's been my honor, rather, and a privilege to talk to you and learn so much about your life. Or jis tarah ki ghatnaon ke andar aapka, India ki ek important national security ke andar aapka jo yogdan raha hai, aur aapne itna liberally aake sab kuch share kara. Thank you so much for that. Thank you for your time.
Thank you, Vinamr. Thank you for inviting me.
Thank you. Wonderful.